الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاحقاف آیت نمبر 21 سے لے کے اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے آیت نمبر 35 تک. دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ پہلے. وذکر اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے، اخا عاد، بھائی کا عاد کے، اذ انذر، جب اس نے انذار کیا، خبردار کیا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، جگہ کا نام ہے، وقد اور تحقیق، خالت، گزر چکے، النذر، خبردار کرنے والے، نذیر کی جمع، من بین یدیہ، اس سے پہلے، و من خلفہ، اور اس کے بعد، پیچھے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. قالو، انہوں نے کہا، کیا جئتا تو آیا ہے، نہ ہمارے پاس، لتفیکا، نہ تاکہ تو پھیر دے، افق سے نا، افق بات کو پھیر دینا اپنی جگہ سے، تو پھیر دے ہم کو، ان آلیہتنا، ہمارے الہوں سے، فاتینا، پس لے آ نہ ہمارے پاس، بیما، سات اس کے، جو تعیدنا، تو ڈراتا ہے ہم کو، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. قولا، اس نے کہا، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو، بلاغ ہوتا ہے پہنچانا، ماں، وہ جو ارسل، تمہیں بھیجا گیا ہوں، بھی ہی ساتھ اس کے، ولا کنی، لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، قومن، تجھلون، ایک قوم، تجھلون، تم جہالت برت رہے. فلما، تو جب، رأوہو، انہوں نے دیکھا ہو اس کو، عارضن، عارض، عرض سے، عرض جو ہوتا ہے نا، طول و عرض جیسے ہم کہتے ہیں، تو پھیلا ہوا چیز کو، جو پھیلا، اس کا ورتھ جو ہوتی ہے، تو بادل بھی آسمان کے اوپر پھیل جاتے ہیں، تو جو چوڑائی میں پھیلے ہوتے ہیں اس کے بعد ان سے بارش بھی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عارض، اس بادل کو کہتے ہیں. لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں لیکن اصل اس کا معنی یہ ہے، عارضاً، بادل کو، مستقبلاً، آنے والا، اودیاتہم، اودیا، وادی سے، اس کی جمع، وادیوں کو، ہم، ان کی، قالو، انہوں نے کہا، ھذا عارضٌ، انہوں نے کہا یہ بادل ہے، ممطرون، مطر ہوتا ہے بارش، تو ممطرون، بارش برسانے والا، نہ ہم پر، ممطر، بارش برسانے والا، نہ ہم پر، بل بلکہ ہوا وہ، مستعجل تم بھی، وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، بھی ساتھ اس کے، ریحون، ایک ہوا ہے، فیہا، اس میں، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، تو دمیرو، ہلاک کرتی ہے، کل شئین، ہر چیز کو، بھی امری ربی ہے، اپنے رب کے حکم سے، فاسبہو، پھر وہ ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا صبح سے ہے سود بہا، اور اسبہو مطلب صبح کے وقت کسی کام کا ہونا، لا یورا، نہیں دکھائی دیتے تھے، الا مگر، مساکینہم، ان کے مسکن، ان کے گھر، کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم جزا دیتے ہیں قوم جو مجرم ہے وہ. اچھا، اب نجزی کا بھی یہاں سے دیکھ لینا، جزا صرف اکیلا جو لفظ ہے نا، یہ اچھے بدلے کے لیے بھی آتا ہے، ریوارڈ کے لیے بھی آتا ہے، اور سزا کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ سزا کے لیے آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جب صرف آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو پھر اب وہ اچھی بھی جزا ہو سکتی ہے اور بری بھی، اللہ آپ کو بدلہ لے، بدلہ تو دینا ہی، آپ کہے جزاک اللہ خیرن، کہ خیر کا بدلہ دے، اچھا بدلہ آپ کو دے، ریوارڈ کرے آپ کو اس کا، تو مکمل یہ بات ہوتی ہے. वलकर अलबत्ता तहकीक मक्कन ना हूं, मक्कन मकान देना जैसे बसाया ना हमने उनको, हूं उनको फीमा उसमें जो इन नहीं, मक्कन ना कुम बसाया हमने तुमको फी इसमें, व जालना और बनाए हमने लहुम लिए उनके समअन कान व अबसारन और आंखें व अफीदतन और दिल, फमा तो नहीं, अगना काम आए अन हूं उनको समू हूं उनके कान, वाला अबसार हूं और ना उनकी निगाहें, वाला अफीदा तुम और ना उनके दिल, मिन शे इन कुछ भी, इद जब कानू थे वो या जादून वो इनकार करते, जीम हा दाल से यानी जानते बूझते इनकार करना, भी आयात अल्लाह अल्लाह की आयात का, वहा काबिहिम और अहाता कर लिया यानी घेर लिया उनको, माँ कानू जो थे वो भी ही साथ इसके, यस्तहजियून वो मजाक उड़ाते, वलकद अहलकना और अलबत्ता तहकीक हलाक कर दिया हमने, माँ हौला कुम जो तुम्हारे आस पास है, मीन अल कुरा करिया की जमा कुरा बस्तियों में से, वह सर्रफ ना और फेर कर लाए, सर्फ होता है फेर फेर के किसी चीज को ला, ना हम अल आयात आयात को ला अल्लाह हम यरजे हूँ शायद कि वो लौट आए, फलाउला तो क्यों नहीं, ना सरा हूँ मदद की उनकी, अल्लदीना उन हस्तियों ने, इत्तखज़ू जिनको पकड़ा उन्होंने, मिन दूने ला अल्लाह के सिवा कुरबानन कुर्ब का जरिया तकर्रुब के लिए, आलिहतन इला बल दल्लू बल्कि वो खो गए, अन हम उनसे, वदालिका और ये, इफ्कुहुम इफ्क है उनका, इफ्क था उनका, इफ्क यानी झूठी बात ना जैसे मनगढ़ंत बात, वाकया इफ्क आप पढ़ चुके हैं सूरह नूर में, वह माँ कानू और जो थे वो, इफ्तारून वो घड़ा करते, वह इस सरफ ना और जब सरफ ना फेर लाए हम, इला तरफ का आपकी, नफरन एक ग्रोह को, मिनल जिन जिन्नों में से, यस्तमियाउन अल कुरआन, यस्तमियाउन एक समा होता है और एक इस्तेमा होता है, ता भी बीच में जब आ जाएगी ना तो वो गौर से सुनने का माना होता है, जो गौर से सुन रहे थे कुरान को, तो इसका नाम कुरान, अल्लाह ताला ने इस किताब में इसका नाम कुरान बताया, फलम्मा फिर जब हाजरू हो वो हाजिर हुए, हु उसके पास, कालू कहने लगे, अंसी तू नून सौ ता खामोश हो जाओ, फलम्मा तो जब को दिया यानी मुकम्मल कर लिया गया पढ़ लिया गया, वल्लो फिर गए, इला कौमिहिम अपनी कौम की तरफ, मुनदिरीन मुनदिर होता है एक मुनजर होता है, दोनों में फर्क क्या है, मुनजिर फाइल है खबरदार करने वाला और मुनजर जिसको खबरदार किया जाए, ठीक है, तो मुनदिरीन खबरदार करने वाले बन के जमा है यहाँ पे, कालू उन्होंने कहा, या कौमना ए हमारी कौम, इन्ना समेना बेशक हमने सुनी, हमने किताबन एक किताब, उनजिला उतारी गई, मिम्बादी मूसा मूसा अलैहि सलाम के बाद, मुसद्दकन तस्दीक करने वाली है, लिमा बैना यदई यानी लिमा बैना यदई यानी वास्ते उसके जो दरमियान है उसके दोनों हाथों के मतलब है उसके सामने, यहदी हिदायत देती है, इलल हक तरफ हक के, व इला तरीक मुस्तकीम और सीधे रास्ते की तरफ, या कौमना ए हमारी कौम, अजीबू जवाब दो यानी कबूल कर लो ना, इजाबो कबूल होता है, दाई अल्लाह अल्लाह के दाई की, तो ये कुरान करीम में भी ये बात है कि ये नाम दाई का के अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दाई अल्लाह अल्लाह के दाई की, वह आमीन और ईमान ले आओ भी ही साथ इसके, या फिर बख्श देगा लकुम लिए तुम्हारे, मिन दुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों में से, वह युजीरकुम और जार होता है हमसाया, तो हमसाया पनाह देने पनाह देता है इंसान को किसी मुश्किल में, तो उसी से युजीर वर्ब है और पनाह देगा कुम तुमको, मिन अजाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से यानी बचा लेगा तुमको, पमन और जो ला ना युजिब जवाब दे, दाई अल्लाह अल्लाह के दाई को, फलई सा तो नहीं है, बिमुआजिज़ इन आजिज करने वाला, फिल अर्द जमीन में, वलई सलहू और नहीं है उसके लिए, मिन दूनी ही उसके सिवा औलिया कोई मददगार, उलाइका फी दलालिन मुबीन यही लोग हैं गुमराही में खुली, अवलम यरो क्या उन्होंने देखा नहीं, अन्नल्लाह लदी के बेशक अल्लाह ताला वो जात है, खलक समावाती वल अर्द जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वलम या और नहीं या आयन या आया कहते हैं थकने को, जब कोई इंसान मेहनत कर करके थक जाए, काम कर करके थक जाए ना, तो उसको कहते हैं वो वाली थकावट जो होती है। या थका भी खल्क हिन्ना, साथ उनकी तखलीक के भी कादिर कादिर है आला इस बात पर, अन के यही अल मऊता, कि वो जिंदा करे मुर्दों को। अब आप भी थक जाएं तो आप भी ये कह सकती हैं, थकावट के लिए कौन सा लफ्ज है अरबी में? आयुन कहते हैं मतलब थक जाना किसी काम का, से करके। बला क्यों नहीं, इन्नहू बेशक वो आला कुल्ली शई इन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। व यौम यारदू, और जिस दिन यारदू अर्ज से पेश किए जाएंगे, अल्लदीन कफर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, आलन नार आग पर। अलैसा क्या नहीं है, यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूछा जाएगा, हादा बिल हक ये हक, कालू वो कहेंगे, बला क्यों नहीं, वह रब्बीना वाह यहाँ पे कसम वाला है, कसम है रब्बीना हमारे रब के, कौला फरमाएगा, फजू को पस चखो, अल आदाब अजाब को भी माकून तुम तक फुरून, बवजह इसके जो तुम कुफर करते थे। फस बेर बस सबर कीजिए, कमा सबर उलुल आजमी, जैसे सबर किया उलुल आजम ने हिम्मत वालों ने, मीना रसूल या आजम वालों ने रसूलों में से, वला तस्ताजिल और ना आप जल्दी कीजिए, लहुम लिए उनके, का अन्नहुम गोया के वो, यौमा यरौना जिस दिन वो देखेंगे, मा युआदूना उसको जो वो वादा दिए गए, लम यलबसु नहीं वो ठहरेंगे, इल्ला साआतन मगर नहीं वो ठहरे मगर एक घड़ी में, मिन नहार दिन में से। बलाग पहुंचाना है पैगाम का, फहल युहलकु तो नहीं युहलकु हलाक की जाएगी, इल्ला मगर अलकौमुल फासिकून मगर कौम जो फासिक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा आज का लेसन है, इंशाअल्लाह ताला आज के लेसन में हम कौम हूद के बारे में, यानी आद जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम है उसके बारे में देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिन्नात की भी कुछ बातें हम आज जानेंगे। तो देखते हैं आयत नंबर 21 से 35 तक सूरतुल अहकाफ। वज़कुर और जिक्र कीजिए, जब भी आएगा जिक्र कीजिए, या इस जब आता है तो याद करें, या इनको बताएं, इनको इनके सामने अपनी कौम के सामने जिक्र करें, किसका? अख़ो आदिन आद के भाई का। आद कौन थे? एक कौम गुजरी है नूह अलैहिस्सलाम के बाद की, ये कौम थी, और इस कौम के पास बहुत यानी फरावानी थी दुनियावी नेमतों की। अल्लाह ताला ने तीसवें पारे में इस कौम का जिक्र किया है, अलम तरा कई फफा अला रब्बु कभी आद इरम ज़ातिल इमाद। तो ये कौमें आद थी, जिनके नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, उनके बेटे इरम, उनसे ये औलाद थी, औस इसके बाद था और उसके बाद आद। तो आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह, ये इनका नसब बनता है। तो इनका नसब पीछे जाके नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, और इनके ये बेटे जो के उनके साथ कश्ती में सवार हो गए थे, उनमें से एक साम भी थे, और उनकी औलाद में से ये थे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज्यादा दुनियावी शानो शौकत दी हुई थी, दुनियावी बहुत रेल पेल थी इनके पास, बहुत साजो सामान था, बहुत फ्लरिश किए थे दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इनका जिक्र करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। ये कौम इनके भाई कहा गया हूद अलैहिस्सलाम को। तो भाई क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि भाई ये उनके दीन में भाई नहीं थे, कि जैसे हम कहते हैं दीनी बहन भाई होते, बल्कि ये भाई थे उनके उनके नसब में, यानी उन्हीं के कौम में से थे। हर नबी अपनी कौम में से ही आया है, आप देखें सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के, हर नबी को उसकी कौम में ही भेजा गया। तो चूंकि ये अपनी उसी कौम में से थे, इसलिए इनको कहा गया कि इनके भाई। तो ये लोग एक ऐसे इलाके में रहते थे जिसका यहां पे जिक्र है, इस अनजरा कौमा, जब उसने इंतजार किया। इंतजार कहते हैं ऐसे खबरदार करने को जिसमें हमदर्दी होती है, जिसमें खैरख्वाही होती है। यानी ऐसे नहीं कि उनको डांटने के लिए खड़े हो गए, बल्कि खैरख्वाही के साथ जब कोई किसी को या हमदर्दी के साथ किसी को वोन करता है उसकी भलाई के लिए, तो उसको इंतजार कहते हैं। इसीलिए अंबिया नज़ीर कहलाते हैं कि उन्होंने इंतजार किया, वो नज़ीर है। खैरख्वाही के साथ डराना, एक होता है जैसे हम बच्चों को डराते हैं कि वो आ जाएगा, पकड़ लेगा तुम्हें जिन से, एक पता नहीं किन किन चीज़ों से, वो इंतजार नहीं कहलाएगा। हम वैसे इसका तर्जुमा डराना ही लिख देते हैं, लेकिन असल है खबरदार करना हमदर्दी के साथ। ठीक है, तो अब जैसे वालदेन अपने बच्चों को खबरदार करते ना कि बेटा अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो देखो इसका बहुत बड़ी सजा है, तो ये है इंतजार करना। ठीक है, तो अब इसके अंदर खैरख्वाही, उनके भाई कहा गया, और भाई भी जो होता है वो भाई की खैरख्वाही करता है। देखिए, जो दीन की दावत देना है ना, इस रास्ते में खैरख्वाही होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के अंदर दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं कि मैं इसको बचा लूं किसी तरह, ये कहीं ये ना हो कि ये आग में जा पड़े, बुरे अंजाम से दो चार हो, ये जब तक हमदर्दी और तड़प ना हो ना, तो दीन की दावत का काम मौसर नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव तभी होगा जब आपके अंदर हमदर्दी हो। अगर आप सिर्फ अपनी धाक बिठाने के लिए कि मैं दूसरों को बताऊं कि मेरे पास बहुत इल्म है, ये तुमने क्या पहना हुआ, तुम्हें नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता कि कुरान में ये लिखा, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चले कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मुझे बहुत आता है, मेरी बड़ी समझ है और मैं कितनी बड़ी आलिमा हूँ, अगर ये धौंस जमानी है, या फिर दूसरों की बस बुराइयां करनी कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं कितनी नेक हूं और आप लोग कैसे गलत गलत काम करने लगे मैं, तो ये खैरख्वाही नहीं है। खैरख्वाही वो तड़प होती है जैसे एक माँ और बाप को अपनी औलाद से होती है। जब आप अपनी औलाद को तन्बीह करते हैं, वॉन करते हैं, तो उसके अंदर आपको देखा है आपने कि आपको धाक बिठाना मकसद नहीं होता कि मैं इनको बताऊं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ या मेरे पास बहुत इल्म है या तुम लोग कितने बुरे हो और मैं कितनी अच्छी हूँ, ये नहीं होता। उसके अंदर वाकई हमदर्दी होती है। और हम देखिए पिछली आयात में पढ़ चुके हैं वालदैन के बारे में और किस तरह उनका एहसान औलाद के ऊपर होता है, तो वाकई वालदैन से ज्यादा कोई इंसान का हमदर्द जमीन के ऊपर नहीं होता इंसानों, क्योंकि वालदैन कभी भी अपनी औलाद के ऊपर बेजा कोई चीज नहीं करेंगे, चाहेंगे कि हमेशा उनकी खैरख्वाही ही उनको मकसूद होती है। तो यहाँ पे भी हमने एक बात तो पहले पढ़ ली ना कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि काफरों को जहन्नुम में धूप धों झोंक दिया जाएगा, तो वो जो दुनिया में उन्होंने अपनी ऐशो आराम किए थे, उनसे फायदा उठाया था, बस वो उनको मिल गया और उनको कहा जाएगा आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अब तुम्हारे लिए जिल्लत वाला अजाब है। क्या तो जो दुनिया के अंदर नेमते इनको आद को मिली नहीं थी, ये नेमते पा के ये समझे कि हमें बस हम कितने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि हम जैसा कोई है ही नहीं। उनको ये लगता था कि हमारी जैसी कौम तो दुनिया के अंदर आई ही नहीं, हम जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब तकब्बुर उनके अंदर इतना ज्यादा था, और जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है ना, तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, वो फिर कुछ समझने को तैयार नहीं होता, और यही इस कौम का प्रॉब्लम था। अल्लाह ताला ने उनको वाकई बहुत कुछ से नवाजा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, अब ऐसी कौम थी, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है जैसी वो थी, जितनी वो जबरदस्त कौम थी ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया के अंदर, कि वो कितनी उनकी जिस्मानी भी ताकत थी और समझ बूझ भी बहुत थी, और इसी चीज ने उनको ये दिमाग में डाल दिया कि पता नहीं हम क्या चीजें हैं, हम कितनी बड़ी चीजें हैं, हमें तो किसी के सुनने की जरूरत ही नहीं। जबकि उनके जो पैगंबर थे उनके पास सिर्फ हिदायत का एक पैगाम लेकर आए थे, जिस पैगाम में उनकी ही खैर ख्वाही थी। तो इद अंजरा कौमहू, जब उसने अपनी कौम को इंजार किया, तो आपने क्या सीखा अभी तक ये बात में कि देखें, जब आप किसी को समझाने लगे, औलाद को नहीं मैं कह रही, क्योंकि औलाद को आप हमेशा खैर ख्वाही से ही समझाएंगे, ये तो डन है। जब आप किसी को समझाने लगे बाहर वाले को, तो उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए? हमदर्दी मकसूद होनी चाहिए, उसकी खैर ख्वाही मकसूद होनी चाहिए, अपनी धाक नहीं। और आप देखेंगे जब ये आपके अंदर आएगा, तो आप खुद ब खुद आपकी बात, आपका अंदाज बदल जाएगा, उसमें बहुत नरमी होगी, उसके अंदर बहुत खैर ख्वाही होगी, और दूसरा सुनेगा भी फिर। और फिर हम देखते हैं कि आहकाफ में जो कौम थी, आहकाफ क्या है? इस सूरा का नाम सूरत अल आहकाफ किससे? हकफ कहते हैं लंबे टीले को जो रेत का बना हुआ होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता लेकिन रेत का होता है, और वो रेत ही होती है जो मतलब उसके अंदर पूरी, आपने देखा जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ एक डिफरेंट उसके होते हैं, मतलब उसके अंदर वो रेत वैसे नहीं होती, लेकिन जो आकाफ होते हैं वो रेत के टीले होते हैं। और ये इलाका कहाँ है? आजकल ओमान और यमन के दरमियान है, बिल्कुल रेगिस्तान डेजर्ट है, मिट्टी धूल उड़ रही है वहां पे, सहराए आजम अद्दहना कहते हैं इसको, कहीं दूर दूर भी यहाँ पे आबादी नहीं है आज तक, अंदाजा कीजिए। और ये इलाका ऐसा है कि इसकी बहुत बाद में जाके इसकी जब इन्होंने, यानी जैसे आसारे कदीमा के लिए करते हैं ना खुदाई की, तो सैटेलाइट से तस्वीरों के जरिए इन्होंने देखा कि कौन सा इलाका है, और फिर वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई चीज जो है ना ऐसे रह नहीं सकती, हर चीज जो है वो रेत के अंदर दब जाती है, कोई चीज सालिम नहीं रहेगी, रेत जैसे उसको निगल जाती है। अल्लाह अकबर, ऐसी वो जगह है आज भी, और दूर दूर तक रेत के टीले फैले में, यही जगह थी जहां पे कौम आद बसती थी। और अब भी जब उन्होंने आसारे कदीमा में निकाला खोदा, तो जाहिर है ये तो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे सतून है, बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, इरम ज़ातिल इमाद, बड़े पिलर्स वाले, इरम इनका जद्दे अमजद का नाम था ना, तो सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो इनकी बताई हैं बातें इतने हजारों साल पहले की, वो वाकई जब आज उन्होंने खोदा है तो उनको पता चला 1990s में कहीं ये खुदाइयां की गई थी, कि ये इन मकामात की तस्वीरें उन्होंने ली और देखा कि यहाँ पे तो टीले हैं बहुत और कोई जा ही नहीं सकता वहां। अल्लाह ताला ऐसी जगहों को ना भी इबरत का निशान बना देता है। तो उन्होंने कहा कि 8 सतून उन्होंने दरियाफ्त किए हैं, कि नीचे सतून है, कोई कोई किला भी है इस तरह से, है नीचे ही है, बस सब कुछ दब चुका है, और किला ऐसा है दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं और टावर्स ही टावर्स हैं किनारों पे, और टावर्स भी बहुत बुलंद। हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग बहुत वो बनाते थे, जिसको कहें यादगारें, जिसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स बहुत बनाते थे, और क्योंकि उनको अपने आप को दिखाना था ना, जब मॉन्यूमेंट्स लोग बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ये अपने आप को दिखाना होता है कि हमने कितना बड़ा पता नहीं क्या पा लिया है, और हम कितनी बड़ी कौम है, और हम क्या चीज़ है, तो इसके लिए वो मॉन्यूमेंट्स बना के रखते हैं ताकि यादगारें हों, हमारा पता चले हम क्या थे। तो खैर, ये वो कौम थी जिनको इंतजार करने के लिए अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه, اور تحقیق گزر چکے خبردار کرنے والے اس سے پہلے اور اس کے پیچھے, ان کے بعد بھی آئے خبردار کرنے والے, ان سے پہلے بھی لوگ آئے تھے, یعنی پیغمبر آئے, ان سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے اور ان کے بعد بھی آئے, تو یعنی ہود علیہ السلام کو ان کے پاس پہلے پیغمبر نہیں تھے. ظاہر ہے میں نے آپ کو ابھی ان کا شجرہ نسب بتایا, تو بہت زمانہ پہلے کوئی نوح علیہ السلام نہیں گزرے تھے. اب دیکھیں یہ علاقہ ایسا تھا کہ اس وقت بڑا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا, لیکن آج خوفناک ریگستان ہے, ریت ہی ریت ہے ہر طرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی وہاں پہ جا کے رہ ہی نہیں سکتا, کوئی ورنہ کوئی خالی زمین نہیں چھوڑتا وہاں پہ, کو جا کے کچھ بنائیں, کچھ خرید لیں اس جگہ کو, کوئی خریدنے والا بھی نہیں اس کا. اور یہ قوم حکمران تھی وہاں کی, اور بہت اونچے لمبے تھے, بہت قداور تھے, اور ان کا تمدن بھی بہت عظیم تھا, لیکن ان کے اندر شرک کی بیماری تھی. اسی وجہ سے پیغمبر نے ان کو وہی پیغام دیا جو پہلے پیغمبر دے چکے اور جو بعد میں آنے والوں نے بھی دیا, کہ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. کیوں صرف اللہ کی کیوں کرو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, اگر تم نہیں کرو گے تو ڈر جاؤ, میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کے عذاب سے. بڑا دن کون سا ہے؟ کس دن کو یوم عظیم کہا گیا؟ وہ دن ہے جو قیامت کا دن ہے. قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ عظیم دن ہے. کس وجہ سے وہ بہت بڑا دن ہے؟ ایک تو لمبا بہت ہے, 50,000 سال کے برابر, دوسرا بہت بھاری ہے وہ دن, یوم ثقیل بھی کہا گیا نا, بڑا بھاری دن ہے وہ. تو میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں, اسی سے آپ کو خیر خواہی کا پتہ چلتا ہے نا, کہ وہ ان کے کتنے خیر خواہ تھے, کہ یہ نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں یا میں نے بڑا بننا ہے, میں تو اس لیے ڈرتا ہوں کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ تم عذاب سے دو چار ہو. کیونکہ جو قومیں شرک میں پڑ جاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے, آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی ہے, ورنہ دنیا میں بھی ان کے لیے, جو قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی قوم امت مسلمہ وائپ آؤٹ نہیں ہوگی کبھی بھی, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی اس طرح سے نہ ختم کرنا جیسے پچھلی امتیں ہوئی تھیں, وہ ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن اگر مسلمانوں میں ہی جو اللہ کے نام لیوا ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اگر وہی شرک کرنے لگتے ہیں, تو یاد رکھیے ان کے اوپر اسی دنیا میں ہی بلائیں آتی ہیں, ان کے اوپر اسی دنیا میں ہی پریشانیاں, مصیبتیں, اور جیسے مہنگائی ہے, جیسے بد امنی ہے, جیسے برے حکمران ہیں, جیسے دشمن کا خوف ہے, اس طرح کی عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کیے رکھتا ہے. تو شرک ایسی چیز ہے جو کہ کسی طرح بھی دنیا میں بھی انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی. ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں, ان کی تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا ہی آخرت میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا بھی پچھلی آیت کے اندر, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کو اسی دنیا میں ہی دے دے گا, جو بھی انہوں نے کوئی نیکی کی ہو یہیں پہ ان کو مل جائے گا, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے اس سوال کا بھی جواب ہے جو ہم پوچھتے ہیں, کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے کیسے وہ دنیا میں اتنے فلرش کر رہے ہیں, کیسے ان کے پاس اتنا کچھ ہے. اور بعض دفعہ شیطان ذہن کے اندر یہ بات بھی ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی, پھر شاید ہم ہی غلط ہیں, یہی صحیح ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا کچھ جو ہے. کہتے ہیں نا کہ فقر بھی انسان کو بعض دفعہ کفر تک لے جاتا ہے. تو ابھی جو لوگ دنیا میں مفلسی میں ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہ بن جائیں گے جو یہ ان کا عقیدہ ہے, تو شاید ہمیں بھی بہت کچھ مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, ان کو جو اتنا کچھ ملا ہوا ہے یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, یا یہ بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں. بلکہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی بات کرے ایسی کہ फिर मुसलमान अगर सही अकीदे के ऊपर हैं तो फिर वो दुनिया में इतने क्यों पिस रहे हैं, फिर काफिर क्यों इतने ऊपर है, ये अक्सर सवाल आता है मेरे पास। तो बात ये है, काफरों को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उनकी किसी भी खैर के काम का बदला दे देना, और दुनिया में मुसलमान क्यों पिस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को छोड़ दिया, शिर्क में पड़ गए हैं। और आज का एक बड़ा शिर्क, वो तो कब्र परस्ती तो है ही है, वो तो आप देख लें जो हाल पाकिस्तान में, इंडिया में, मिस्र में मुसलमानों का है, जगह जगह मज़ार बने हुए हैं, कब्र परस्ती हो रही है, उसके आगे झुक भी रहे हैं, नमाजें उनकी तरफ पढ़ रहे हैं, दुआएं उनसे मांग रहे हैं, जो हम पहले बात कर भी चुके हैं, हवामीम में ये बातें पहले भी आ चुकी हैं कि शिर्क कैसे थे और शिर्क के बाद अल्लाह ताला क्या अंजाम से दो चार करता है। तो अगर इन लोगों को देख के, जो गैर मुस्लिम है उनको देख के जहन में कहीं ये शायबा भी आता है कि पता नहीं ये ठीक है, हम तो पिस रहे हैं, तो अपने आप को भी देखें कि कहीं शिर्क में तो नहीं मुबतला, क्यों हमारे जवाल का वजह कहीं ये तो नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा जो लोग ये कब्र परस्ती की तरफ नहीं जाते, उन्होंने अपना खुदा मटेरियल को बनाया हुआ, पैसा माल दौलत, इसकी हविस इस कदर के उसके पीछे अपने दीन को बेचना कोई बड़ी बात ही नहीं। दीन एक तरफ हो, पैसा कहीं से मिल रहा है तो बस वो चीज है जो कि अपना खुदा बनाया हुआ जिसको। तो अब्दुल दिरहम हलाक हो गया, अब्दुल दीनार हलाक हो गया, ये किसने फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आब्द कहते हैं बंदे को, वो अब्दुल्ला नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं बना, वो दिरहम का बंदा बना, दीनार का बंदा बना, डॉलर का बंदा बना। डॉलर आ रहे हैं तो बेचने को भी तैयार हो जाएगा अपना दीन, ईमान, इज्जत, हत्ता के बेगुनाहों को भी दे देंगे दूसरों को, औरतों को भी बेच देंगे अपनी, बस डॉलर आना चाहिए। तो ये चीज कि इंसान अपने ईमान को इतना हल्का कर ले और दूसरी चीजों की परस्तिश शुरू कर दे, ये भी तो शिर्क है। और आज का ये शिर्क है, आज बुतों के आगे नहीं लोग खड़े हो रहे, इस शिर्क से दो चार हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ना इबादत करो किसी की, जो कि हर पैगंबर का यही पैगाम रहा है, मैं तुम्हारे लिए डरता हूं बड़े दिन के अजाब से। हालांकि वो भी ये कर सकते थे कि भाई अपनी इबादत करते रहो, भाई लोग जाएं जहन्नुम के अंदर, हमें क्या, लेकिन पैगंबरों के अंदर खैर ख्वाही थी। वो पैगंबर होते ही ऐसे हैं कि उनके अंदर इंसानियत के लिए हमदर्दी होती, और पैगंबरों के बाद अब जब ये उम्मत खड़ी हुई है वही काम करने के लिए जो पैगंबरों का, तो जरूरी है कि इनके अंदर ये हमदर्दी हो इंसानियत की, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी ऐसी हमदर्दी हो कि ये किस तरफ को जा रहे हैं, ये इन्होंने अपने ईमान बेच दिए, ये किसकी पूजा में लग गए, कोई कब्रों पे झुक रहा है, कोई पैसे के आगे झुक रहा है, और जो दूसरे हैं जो बुत परस्ती कर रहे हैं, या जो और तरह के शिर्क कर रहे हैं, या जो एथीस्ट हो गए, उनके लिए भी ऐसी हमदर्दी हो, यहाँ क्या बनेगा इनका। अगर ये इससे बाज ना आए तो आग का अजाब कितना बड़ा है, इनकी फिक्र लग जाए। लेकिन देखा जाए तो हम में से किसी को भी ये फिक्र क्या, कभी ख्याल भी नहीं आया, कभी ख्याल भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा, करते रहने दो भाई, हर एक का अपना अपना है, पैगंबर भी ये कह के आराम से बैठ जाते, हर एक का अपना अपना है, देखें जी करने दें जो जो कर रहा है, हमें क्या। वो कहता है ना, तू तू अपनी बना, तुझे पराई क्या पड़ी है, पता नहीं इस तरह से कुछ शेर है ना, कि तू अपना काम करो, तुम्हें क्या कि लोग क्या कर रहे हैं। तो पैगंबरों ने ऐसा नहीं किया, पैगंबरों की जिंदगियों से सीखें, उनकी तड़प, उनकी हमदर्दी, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये सीखते हैं कि कितनी ज्यादा उनको तड़प थी कि अल्लाह ताला को बार बार कुरान करीम में कहना पड़ा कि ऐ नबी आप इतना गम ना करें, आप इनके पीछे क्यों इतने हलकान हो रहे हैं, छोड़ दें इनको। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो लोग दुनिया में मबऊस किए गए जो इंसानियत के हमदर्द थे, जो इंसानियत के लिए हसास दिल रखते थे, जो इंसानियत की भलाई चाहते थे। सबसे बड़ी भलाई ये है कि शिर्क से लोगों को रोका जाए, किसी को आप अस्पताल बना दें, किसी को आप कोई और यतीम खाना बना दें और लोगों की भूख मिटाने का इंतजाम कर लें, ठीक है, बड़े नेकी के काम है, लेकिन ये वक्ती काम है। जो असल भलाई है किसी के साथ, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर उसको आग के अजाब से बचा लेना है, ये असल भलाई है इंसान के लिए। क्योंकि भूख भी इंसान बर्दाश्त कर लेगा, प्यास भी बर्दाश्त कर सकता है, बीमारी भी आ गई ठीक है, रो धो के किसी दिन बीमारी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आग का अजाब है वो खत्म नहीं होने वाला, अगर कुफर पे मर गए तो, अगर शिर्क पे मर गए तो। लिहाजा पैगंबरों ने इस चीज की फिक्र की है, और इसी चीज को हम कहते हैं कि आप लोग इसको अपनी फिक्र बनाइए, खड़े हो जाएं इसके लिए, कभी तो सोचें कि ये अल्लाह ताला के बंदे किस तरफ जा रहे हैं। हाय जहन्नुम का अजाब, मुझे पता है कि क्या होता है, मैंने कुरान में पढ़ा जहन्नुम का अजाब कितना सख्त है, मैं इन लोगों को बचा लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम आग की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हारी पुश्तों से तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं, जैसे पतंगे नहीं होते वो जाके आग में गिरते रहते हैं, मैं तुम्हारी पीछे से तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं और तुम होके चुड़ा चुड़ा के आगे जाते। तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी थी। तो थोड़ी सी इसकी रमक भी अपने अंदर लेकर आए ना, तो हम कुछ कर सकते, जरा सी भी। हम उतनी नहीं कर सकते जितने पैगंबर थे, उन्होंने तो अपनी जिंदगियां इस काम के लिए लगा दी ना, लेकिन हमारे अंदर जरा भी है, टटोले अपने दिल को, जरा सी भी हमदर्दी है, अगर कहें भी कि उठ जाओ, जाओ लोगों को बुलाओ, कुरान की तरफ बुलाओ, खुदा के लिए हिदायत के पैगाम की तरफ बुलाओ, नहीं, हमारे पास तो इतने काम है, हम तो बिजी बहुत है, हम तो खुद ही पढ़ने के लिए आ गए तो बहुत बड़ी बात समझे, आपके ऊपर एहसान है, हम कहाँ जाएंगे लोगों को कहने के लिए, हमें तो भाई शर्म आती है। पैगंबरों ने तो शर्म नहीं की, उन्होंने तो अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं किया, लोगों ने उनको बुरा भला भी कहा, नूह अलैहि सलाम को तो मार मार के उनके घर में अदमुआ करके छोड़ के चले जाते थे, उन्होंने तो नहीं इस चीज का ख्याल किया। हमें तो खैर कभी अल्लाह माफ करे हमें कि हमें किसी ने जरा सी टेढ़ी आंख भी नहीं देखा होगा, लेकिन हम फिर भी शर्मा के बैठ जाते, क्यों कहें, हमारा काम है क्या ना? हाँ, आपका ही काम है, क्योंकि आप उम्मत मुस्लिम आए और आप ही को ये मकाम इसीलिए मिला है कि आपके जिम्मे अब पैगंबरों वाला काम है, ऐसे ही नहीं कि आप बड़े लाडले थे, आप बस नबी की उम्मत हो गए, आखिरी नबी की, तो हम बहुत बड़ी चीज हो गए, मनाते फिरते नबी का दिन और इनकी पैदाइश का दिन और फिर बड़े इसके पर खुश होते हैं, हमने तो हक अदा कर लिए, उनकी तड़प का कोई हक अदा किया, उनकी तड़प को अपनी तड़प बनाया। मैं नहीं कहती कि वो अपनी जिंदगियां पूरी लगा के और कुछ ना करें, लेकिन कुछ तो जरा सा भी एहसास है इंसानियत, अपने मुसलमान बहन भाई भी किस तरफ को भागे जा रहे हैं, किस तरफ दौड़ रहे हैं, अगर हम करने के लिए कुछ करते भी हैं तो तब भी इसलिए ताकि हमें शाबाशें मिले, हमें कोई टाइटल मिले, हमें कोई इनाम मिले, हमारे नाम लिए जाएं, हम बड़ी चीज बन जाएं, तब तो ठीक है, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर हम किस बात पे फख्र करते हैं कि हम चुनी हुई उम्मत है, हम बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन उम्मत आप तभी बनेंगे जब आप इस मिशन को आगे लेके चलें, वरना जलीलो ख्वार होंगे दुनिया में और हो रहे हैं। और आप देख लें कि दूसरों ने आज हमसे क्या सीखना, हम तो खुद भी भूल गए वो रास्ता जिस पे हमने चलना था। तो कुरान पढ़ने वाले तो कम से कम इस तड़प को अपने अंदर पैदा करें, खुदा के लिए आप किसी और को नहीं, काफिर को नहीं बुला सकते, मुसलमानों को ही बुला लो, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको ही बुला लो, नहीं फिर वो हमें ये कहते हैं, फिर वो हमें ये कहेंगे, फिर वो हमें वो कर, तो क्या हो गया, हमारी इज्जतें क्या नबियों की इज्जतों से भी ज्यादा है, रसूलों की इज्जतों से ज्यादा है? जब वो कह दें तो कहें शुक्र है, आज मैं उस काफले का हिस्सा बन गई जो काफला पैगंबरों का काफला है, जिसमें आगे आगे पैगंबर, मैं भी कहीं पीछे, बिल्कुल पीछे, एक इस काम करने के लिए अगर मैंने अपना चंद घंटे भी निकाल लिए इस काम को किया, तो मैं भी कहीं पीछे, चलो इस काफले में तो शामिल हो गई, मुझे भी किसी ने किसी दिन टेढ़ी आंख से देख लिया, या कोई खिताब दे दिया मुल्लानी का या एक्सट्रीमिस्ट का या पागल का, चलो शुक्र है मैं भी इस काफले में शामिल होगा। जिसके लीडर्स कौन है? पैगंबर है। ये उनके वाला दर्द है जो मैंने लिया, ये उनकी वाली जिम्मेदारी जो मैंने उठाई है। आपको कोई काम कहे कि ये काम वो है जो सदर साहब करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, वजीर करते हैं, तो आप कहेंगे वो वाला काम मुझे दिया जा रहा है। इसके लिए तो लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं, वोट लेने के लिए देखो कैसे मिन्नतें करते हैं, क्या क्या करने को तैयार हो जाते, झूठ तक बोलते हैं, धोखे देते हैं। हमें ये काम दे दिया जाए, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया इस काम के लिए कि ये उम्मत ये काम करेगी, वो जो ऑनरेबल काम पैगंबरों का था। लेकिन उम्मत को कहाँ एहसास, उम्मत को कहाँ पता कि मेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी है। ये उम्मत भूल चुकी है इस काम को, इस रास्ते को, और बिल्कुल उसी रास्ते पे चल पड़ी जिस पे काफिर चल रहे हैं। काफिरों के जिम्मे तो ये काम नहीं था, उम्मत मुस्लिमा का जिम्मा था ना। फखर तो आप कर रहे हैं ना कि हम उम्मत मुस्लिमा के चुने हुए लोग हैं, और इसी बात के ऊपर हमारी निजात होनी चाहिए आखरत में कि हम उम्मत मुस्लिमा के बैज तो आपने लगा लिया, बैज लगाने के बाद कोई काम भी तो करना था। अगर आज अगर एक काफिर की जिंदगी और एक मुसलमान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, तो किस चीज का ऑनर ले रहे हैं, किस चीज का टाइटल मिलना चाहिए, किस बात के ऊपर आखरत के अंदर निजात के लिए आपको रखना चाहिए उम्मीद कि हमें निजात मिलेगी क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। तो देखें पैगंबरों का काम, और देखें उनकी ख्वाह ख्वाही कि वो यही पैगाम देते रहे, और उन्होंने ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने ये पैगाम कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, सूरह आराफ में कितने सारे पैगंबरों की बात आती है, नूह अलैहिस्सलाम से लेके हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सब ने यही पैगाम दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो ये नहीं कहते थे आगे लोगों को, लोगों ईमानदारी के साथ रहो, लोगों जिना ना करो, लोगों चोरी डाके ना डालो, वो बाद की बातें हैं, पहले इस पैगाम को आम किया। हम कहते हैं ये कहेंगे तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ये इस बात को कहा कि एक अल्लाह हय और कयूम है, एक अल्लाह की जात है जो हमेशा से कायम और हमेशा रहने वाली है, कोई और नहीं है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, तो अगर हमने ये कह दिया लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। यही तो पैगाम देना है भाई, अच्छी अच्छी बातें बस लोगों को सिखा दो, उनको कह दो अखलाक अच्छे रखो, सलाम किया करो, देखो अच्छे बन के रहो, हमसायों से अच्छे रहो। देखिए ये अखलाक के दर्स बाद में है, पहले जो बेस है जिसके ऊपर इमारत खड़ी होनी वो तो तौहीद है। तौहीद को ही अगर छोड़ दिया और इस पैगाम को ना आगे दिया तो फिर क्या दिया? तो पैगंबरों की ये तड़प थी सबसे पहले, उसके बाद वो बुराइयां जो लोगों की होती थी उनको एड्रेस करते थे। मैं तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। कालू, उन्होंने कहा, आगे से क्या वो जवाब देते हैं, अजीतना लितफिकना अन आली हतीना, क्या तू आया हमारे पास ताकि तू हमें फेर दे हमारे इलाहों से। आप देखें कि इनसे पहले भी कौम को, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनसे पहले भी डराया जाता रहा, लेकिन आप देखें नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो सवार हुए साम, वो तो तौहीद पे थे, उनके आगे उनकी नस्ल के अंदर ही ये कौम आद पैदा हुई। जबकि क्या ये नहीं जानते होंगे कि पिछले पैगंबर ने भी यही नसीहत की थी, नूह अलैहिस्सलाम हमारे यानी जद्दे अमजद हमारे पीछे नूह अलैहिस्सलाम थे, वो भी यही कहते थे। पैगंबरों का तो पैगाम एक ही रहा है, कभी तौहीद वालों में भी आगे काफिर पैदा हो जाते। ये नूह अलैहिस्सलाम के उस बेटे से औलाद है जो कि मतलब सही थे, और इन्हीं से आगे फिर समूद पैदा हुए जो इनमें से ईमान वाले निकले, क्योंकि ये तो खत्म हो गए थे। तो कभी इस गुमान में, खुशफहमी में हमेशा नहीं रहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे और हमारी नस्लें भी मुसलमान ही रहेंगी, और क्या रहेंगी। नहीं, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान दर पे होता है। शैतान तो कोई रास्ता चाहता है कि कहीं कोई चोर दरवाजा मिल जाए मुझे और मैं दाखिल हो जाऊं। तो वो कहने लगे तू हमारे पास आया कि हमें हमारे इलाहों से हटा दे, फातीना अभी मा ताईदुना इन कुंता मिना सौदिकीन, ले आ वो जो जिसकी तू हमें हर वक्त धमकियां देता रहता है, अगर तू सच्चा है तो क्या ले आ, अजाब। कभी इंसान अजाब की भी जल्दी मांग सकता है, कभी इंसान शर को भी जल्दी मांग सकता है। हाँ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने शर को भी जल्दी मांगा। अबू जहल नहीं, काबे का पर्दा पकड़ के कहता था कि अगर ये सच्चे हैं तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बारिश कर दे या अल्लाह। नहीं, अपने ऊपर खुद अजाब मांगते थे, बार बार कहते थे ले आओ वो अजाब, ले आओ वो अजाब, कहाँ है वो कयामत। तो इस तरह से करके वो मजाक उड़ाया करते थे, इस चीज को हकीर करते थे, अजाब को भी ऐसा समझते थे जैसे कोई चीज ही नहीं। तो बाज दफा इंसान अपनी जुबान से ही अपने लिए शर मांगने लगता है बजाय खैर मांगने की। हम तो नहीं कहीं ऐसा करते। जब हम गुस्से में आ जाते हैं, जब हमें किसी के ऊपर बहुत बहुत किसी से नाराजगी होती, तो क्या कहते हैं? अपने आप के ऊपर ही बददुआएं करने लगते हैं, कभी अपने घर पे, कभी अपने बच्चों पे, कभी ये कहने लगते हैं अगर मैं झूठी हुई तो मैं मर जाऊं या मेरे बच्चे या मेरे घराना या मेरे फलां। हालांकि आप सच्चे भी हैं तो बुरी बात मुंह से ना निकालें, चाहे आप सच्चे भी हो। कभी कहते हैं हाय हम ही मर जाएं, हाय हम ही मर जाते, हमारा कुछ ना रहता, फलां का कुछ ना रहता। अपने ही प्यारों के ऊपर, अपने ही बच्चों को बाज दफा माएं बद्दुआएं देने लगती। कभी शर ना मांगे, हमेशा खैर मांगे। कभी ये ना कहे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बेड़ा गर्क होना पता है कितनी बड़ी बात है। अब ये मुहावरतन हम ऐसे कह देते थे बेड़ा गर्क हो इसका, लेकिन जिसका बेड़ा गर्क हो गया ना तो बड़ी मुश्किल में आ गया। बे सोचे समझे मुंह से शर निकालते रहना। और आम तौर पे औरतों की ये बातें होती हैं, ऐसा हो जाए मेरे साथ, ये हो जाए, मैं ऐसी हो जाऊं, तो कभी भी ना निकालें। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि इससे तो बेहतर था कि मुझे कैद ही हो जाए, इन औरतों के शर से बेहतर, और फिर कैद हो गई थी। कभी कभी मुंह से निकाली हुई बात फौरन पूरी भी हो जाती है, और फिर हम रोते हैं उसके बाद कि हाय ये तो मैंने कहा था उस वक्त। और बाज दफा ये लोग सवाल भी करते हैं कि अब हम तो हमने ऐसा कह दिया, अब हमारे पर ये आफत आ भी गई जैसा हमने कहा था, तो अब हम क्या करें? तो खुद ही मांगी थी फिर। तो केयरफुल हो, अपनी जुबान को कंट्रोल करें बजाय हमारी जुबान हमें कंट्रोल करें। हाँ, वो अपने ऊपर शर मांग रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं ले आ हमारे ऊपर अजाब। कोई अच्छी चीज है अजाब? और लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि वो एक दिन उन्होंने ये कहा और उसके बाद फौरन हो गया ऐसा, नहीं, बल्कि बहुत अरसे तक उन्होंने तबलीग की और ये लोग ऐसा कहते रहे, हम तंग आ गए हैं ए हूद आपकी बातें सुन सुन के, और अब आप ले ही आए हमारे ऊपर आजाब, आ क्यों नहीं जाता? कौला इन्नमल इल्म अंदल्ला। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक बात बता दूं, बाज औरतें भी कहती हैं आप मुझे तलाक दे क्यों नहीं देते, दे देना मुझे तलाक, मुझे तंग आए हुए तो दे देना। ये भी बुराई मांगना है ना, खुद ही दूसरे के मुंह में अल्फाज डालना। तो ये सब बुरी बातें हैं। तो वो उसने कहा, किसने? हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, मुझे क्या पता कब आना है अजाब, मुझे कह रहे जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ, मैं ना अजाब ला सकता हूं ना मुझे पता है कि कब आएगा। और आप इससे कितनी जबरदस्त ये बात देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा मुझे पता है। कहते ना, वो कहते थे कि कब आएगा अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, कब आएगा, ले आओ उसको। तो आप देखें उन्होंने ये नहीं कहा हाँ मुझे पता है। हम तो कितना इसको बुरा समझते हैं कि अगर कोई कह दे कि भाई कब ये चीज होगी या क्या होगा, या इस सवाल का कोई सी ने मेरे से पूछ लिया, तो अब लाजमी मैंने इसका जवाब देना चाहे मुझे आता हो या ना आता, क्योंकि फिर ये समझेगा कि मुझे आता ही नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा, ये लोग तो बिल्कुल ना समझी की बात कर रहे हैं, कब आएगा अजाब, लेकर आओ अजाब, ये ना समझी की बात है। पैगंबर आगे से उनके लेवल पे नहीं जाते, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कब आएगा, और इसमें वो शर्म महसूस नहीं करते, उसके अंदर कोई कोई ये उनकी इज्जत में कमी नहीं हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे मुझे नहीं पता कब आएगा अजाब। तो इससे हमें पता चला जब पैगंबरों को ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे नहीं पता, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह,
बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है। आपको पता है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों का फरमाया था कि तुम इन चीजों के नाम बताओ जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे, फरिश्तों को नहीं पता था, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, सुबहाना का तू पाक है अल्लाह, हमें नहीं पता। तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी, कोई शर्म नहीं है आपकी कि अगर आपसे कोई सवाल कर ले और आप कह दें मुझे नहीं इसका पता, नहीं पता तो नहीं पता, आप इल्म छुपा नहीं रहे, लेकिन आपको अगर श्योर नहीं है, जरा सा भी शक हो, तो प्लीज किसी को जवाब ना दिया करें बजाय उल्टे सीधे जवाब देने के। बहुत सारे लोग मेरे पास इस बात को लेकर आते हैं, हमने ये सुना है, किसी ने हमें ये कहा, और बिल्कुल उल्टी बातें। मैं कहती हूँ किसने आपको ये बता दिया, किसने आपको कह दिया ये, फलां ने बताया था, फलां ने बताया, खुद ही बताना शुरू हो गए। तो कितना गलत है ये कहना कि अपनी तरफ से बातें बना के और जवाब बता देना ताकि हमें लोग समझे कि हम बहुत बड़े लायक और वायक और हम बड़े अल्लामा हैं। नहीं, परहेज किया करें इससे और मत शर्माया करें कहने से कि वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता, या मैं पूछ के बता दूंगी, कोई शान में कमी नहीं आ जाती हमारी। और पैगंबरों के नहीं आई तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम ये कह दें। वह उबल्लिगु को मा उर्सिल तु भी, मैं तो बस पहुंचा रहा हूं जो मेरे पास भेजा गया। मेरा काम आप लोगों को इस चीज का जवाब देना नहीं है, मेरा काम सिर्फ पहुंचा देना। सूरह आराफ में भी यही है, उबल्लिगु कुम रिसालाती रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। मैं तो तुम्हारे पास एक नसीहत करना है ना, मुझे मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूं अल्लाह ताला का पैगाम, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखे ना, वो कह रहे हैं तुम तो हमें हिटाने के लिए आया, तुम ये करने के लिए आए हो, तुम ऐसे करने, ये हमेशा से लोगों का काम रहा है कि लोग जो उनकी खैरख्वाही करते हैं ना उसके पर, नहीं इसका तो कोई एजेंडा होगा, ये तो यहूद के एजेंडे पे चल रहा है, इसको तो कहीं से मिलती होंगी फंडिंग, ये तो कोई ऐसे होगा, ऐसे ही उसके ऊपर बातें करेंगे कि लोगों को उससे भगा दे दूर, प्रोपोगंडा जैसे फिरौन ने भी किया था। ये तो तुम्हारे तुम्हारी ये जमीन से निकाल देना चाहते, हालांकि ऐसा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी नहीं था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस जमीन से, लेकिन फिरौन ने ये बना लिया। तो शकूक व शुबहात पैदा करने एक दाई इल्लाह की बारे में और उसके मकासद को कुछ और ट्विस्ट करके बताना कि इसका तो मकसद ये है, और गालिबन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है कि उन्होंने कहा था ये तो तुम्हें बड़ा बनना चाहता है, यानी लीडरी चाहता है अपनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी काफिर आ गए थे ना यही कहते हुए, अगर तुम्हें लीडरशिप चाहिए वो भी तुम्हें दे देते हैं, शादी करनी वो भी, यानी तुम्हारे ये मकासद है, इनमें से कोई मकसद होगा ना इसके लिए कर रहे हो, तो हम वो तुम्हें वैसे ही दे देते हैं मगर ये छोड़ दो। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है, इस तरह से लोगों को बदजन किया जाता है कि देखो ये तो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, इनका मफाद है इसके अंदर, वोट लेने हैं इन्होंने। इसी वजह से पैगंबर कहते थे हमें तुम्हें कुछ तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा काम बस ये अल्लाह ताला ने जो पैगाम हमें दिया वो तुम तक पहुंचा दे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बस पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ, लाकिन अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम जिहालत की बातें कर रहे हो। जिहालत क्या है? कुफर पे अड़े रहना जिहालत है। जिहालत ये नहीं है कि कोई इंसान स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया तो ये जाहिल है जी, ये हमारी जुबान में जिहालत होती है, लेकिन असल जाहिल वो है जिसने अपने रब को ना पहचाना, अपने मालिक को ना पहचाना, जिसने उसको पैदा किया, अब उसका खालिक है, जिसका सबसे बड़ा एहसान है उसके ऊपर, जो उसका मोहसिन है, उसी को नहीं पहचाना, ये सबसे बड़ा जाहिल। चाहे वो अपने आप को PhD करे, साइंटिस्ट कहे, पता नहीं क्या क्या अफलातून कह रहा है, वो कुछ भी नहीं है, वो जाहिल है अगर उसने अपने रब को नहीं पहचाना। इस कायनात को देख के भी उसको रब नहीं याद आया, उसकी पहचान नहीं हुई, अपने आप को अपने जिस्म में ही देख लेता, आफाक में भी अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं, कायनात में भी, और तुम्हारे अपने अनफुस में भी रखी हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं तो देख लेते, तो कितना बड़ा जाहिल है जिसने कहीं पे भी नहीं देखा, आंख खोल के देखा ही नहीं, हर तरफ उसके अल्लाह ताला की निशानियां बिखरी पड़ी, अगर उसको तौफीक ना हो। और आज कितने ही ऐसे इंसान हैं जो जाहिल हैं, जाहिलों के हजूम है। कितनी पॉपुलेशन जो अब की कहती है हाँ अल्लाह है बस, और उसके बाद कुछ भी नहीं पता। कितने ही हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े दफ्तरों में, कितने बड़े ओहदों के ऊपर वजीर हैं, मुशीर हैं, लेकिन सब जाहिल हैं, क्योंकि वो अपने रब को नहीं पहचानते। उन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली, लेकिन जिसने रब के कलाम को ना पढ़ा, जिसने रब को ही ना जाना, उसकी मार्फत नहीं, उसकी पहचान नहीं आई, वो जाहिली तो है। तो जाहिल रहना पसंद है क्या कि अल्लाह ताला के यहाँ हम जाहिल उठें और जाहिल ही रहें? अगर नहीं तो रब को पहचाने उसके कलाम से, जाहिल बनना पसंद ना करें। हमें लोगों में से कोई कह दे तुम बड़ी जाहिल हो, वो कितना बुरा लगेगा, लड़ने खड़े हो जाएंगे उससे कि तूने मुझे क्यों जाहिल कहा। लेकिन अल्लाह के यहाँ हम जाहिल रहें, ठीक है ये? तो उन्होंने फरमाया मैं तो तुम्हें देखता हूं कि तुम जिहालत बरत रहे हो, तुम अंधे हुए पड़े हो ख्वाहिशात के पीछे। अब देखें, आप शुरू से इसको देखें तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही जा रही कि आप कुरैश मक्का को ये बात बता दें, ये किस्सा सुना दें आद का। आद का ही किस्सा क्यों सुनाएं, क्या वजह थी? अभी मैंने आपको बताया कि आद जो थे वो भी दुनिया में इतने मगन हो चुके थे, इतना वो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे। उन्होंने ये टावर्स बना लिए, पता नहीं वल्लाहु आलम कैसे बनाए होंगे, अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजी थी या वो कितने ताकतवर थे कि जो इतने लंबे लंबे सुतून, जो उन्होंने आप खुदाइयां भी करके बताया है कि कितने बड़े बड़े टावर्स मॉन्यूमेंट्स खड़े किए हुए, कैसे बनाते थे वो? समूद की आज तक खड़े, हमारे तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर जिस, जो हम अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते हैं, हर दौर में ही शायद कौमों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, शायद कुरैश मक्का भी समझते थे, समूद के आज तक खड़े में वो जो मकानात थे, हजारों साल गुजर गए, हमारे कहाँ 100 साल भी नहीं चलते, गिर के वो जाते हैं हवाओं से ही उड़ जाती हैं छतें, वो जलजला आता है देखें कैसे गिरे पड़े होते हैं, वो हजारों साल गुजर गए वैसे के वैसे ही खड़े हैं। आप सोचते नहीं है कि ये कौमें कितनी आगे होंगी, क्या टेक्नोलॉजी थी इनके पास, क्या समझ थी इनके पास, क्या अकल थी? अगर आज आप सोचते हैं ना, मैं तो 21st सेंचुरी की बंदी हूं और मैं तो यहाँ बंदा हूं और मैं तो पता नहीं कितनी चांद पे पहुंच गए, हमने तो क्या क्या डिस्कवरीज कर ली और हम तो पता नहीं क्या चीज है, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि पहली कौमें बहुत बड़ी बड़ी शानो शौकत वाली थी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वैसे कोई थे ही नहीं, मिसलुहा फिल बिलाद, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कहीं के, कहीं मुल्कों में ऐसी कोई नहीं मिलते थे जैसे वो थे लोग, खुद फरमाया अल्लाह ताला ने वैसा पैदा ही नहीं किया। तो फिर हम क्या हैं और हमारा नॉलेज क्या है? तो वो बड़ी बड़ी तहजीबें थी, और इसी तरह कुरैश मक्का को भी बहुत जोम था कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, और वो भी इसी तरह अपनी दुनियावी शानो शौकत में खोए हुए थे, और यहीं की लज्जतों में, और यही, और अपने आप को बड़ी बहुत बड़ी चीज समझते थे क्योंकि बस काबा के मुतवल्ली, और हालांकि वो तो कुछ भी नहीं थे उन कौमों के मुकाबले में, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे। तो इनको बताया जा रहा है कि तुमसे भी बड़ी ये कौम गुजरी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके मुकाबले में, और देख लो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया जब उन्होंने शिर्क को छोड़ने से इनकार किया, जब उन्होंने इन झूठे माबूदों को छोड़ने से इनकार, उनके पैगंबर ने भी उनको सेम यही पैगाम दिया था जो तुम्हें आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, फिर देख लो उनके साथ क्या बना। फलम्मा रअऊहु आरिदं मुस्तक़बिला औदियतिहिम, जब उन्होंने देखा उस बादल को जो आने वाला था, सामने से आ रहा था, मुस्तकबिल होता है ना जो सामने होता है, और सामने से आ रहा था उनकी वादियों की तरफ, बादल को उन्होंने देखा, तो बहुत अरसे से इनके पास कहत सा हुआ हुआ था, खुश्क साली थी, बारिश नहीं बरसी थी, तो जब इन्होंने बादल देखे आते हुए तो जैसे आज हम भी बड़े खुश होते हैं बादल आ गए, तो उन्होंने कहा कौला हादा आरिदु मुमतरिना, ना ये बादल आया हमारे पर मी बस बरसाने के लिए। उनके नबी ने कहा बल हुआ मस्ताजल तुम भी। नबी तो समझते थे, उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से पता चल जाता था कि ये अजाब का वक्त इनके ऊपर आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, ये वो हवा है जो एक अजाब लेकर आई है, दर्दनाक अजाब। तो उनके पैगंबर ने उनको वॉर्न कर दिया कि ये था जिसका तुम कह रहे थे ना कि लेकर आओ अजाब, लेकर आओ अजाब। तो आ गया अब अजाब तुम्हारे पास, और वाकई उसके अंदर अजाब था। हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा, लेकिन इनके ऊपर फिर वो अजाब आया। ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली, जब ये बादल आए ना इतनी जोर से चली कि जिससे इनके घर उखड़ गए, इनके जैसे आप समझे टॉर्नेडो, टॉर्नेडो आ गया। ऐसा वो टॉर्नेडो था ना, आपने आज भी देखा ना टॉर्नेडो कैसे होते, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन कभी आपने उसमें कहीं मतलब टीवी पे देखा होगा टॉर्नेडोस को? मैंने देखा ट्रक, बड़े बड़े ये ट्रेलर ट्रक होते ना, वो भी उठाए वो हवा के अंदर ऐसे जैसे छोटी छोटी मक्खियां होती हैं इस तरह हवा में गोल घूम रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो उस वक्त वो हमारे कहते हैं नहीं जी इसके अंदर जिन्नात है, इसके अंदर ये ऐसी बात, ये अल्लाह ताला ने ऐसी हवा पहले भी भेजी हुई आद के ऊपर। वो टॉर्नेडो तो कैसा था कि कैसे टॉर्नेडोज थे बहुत सारे होंगे कि वो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलते रहे। हमारे पास तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि टॉर्नेडो वार्निंग है, और वो एक गोला सा आता है और वो गुजर के चला जाता है, वो एक होता है जो चलता है और फिर ऐसे चीजों को उड़ा के ले जाता है। लेकिन इनके ऊपर तो 8 दिन तक यही होता रहा कि इनके मुवैशी ये खुद इतने लंबे लंबे थे, ये उड़ उड़ के ये हवा उनको ऊपर लेकर जाती थी, उठा के पटकती थी, इतनी जोर से जमीन पे मारती थी कि सर अलग हो जाता था और धड़ अलग हो जाता था। ये घबरा के अपने घरों में दाखिल हो गए, घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन जो हवा थी वो ऐसी थी, रीह थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दरवाजों को तोड़ के हवा अंदर आती थी। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैंने देखा है हरिकेन में, यहाँ पे हरिकेन की जब हवाएं जो हरिकेन के बाद चलती हैं उसके साथ चलती हैं, तो हरिकेन तो ज़ाहिर समुद्री तूफान होता है, लेकिन उसकी जो जब वो लैंडफॉल किया उसने और जब हमारे इलाके में आया, तो मुझे यही याद आया कि ऐसे लग रहा था कि हमारे घर के जो खिड़कियां हैं ना अब तोड़ के हवाएं अंदर आने लगी। हालांकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी का नहीं था, ये फिर भी कम था, और ये अल्लाह ताला का एहसान होता कि जब हरिकेन्स लैंडफॉल करते हैं जमीन के ऊपर आते हैं वो समुद्री तूफान, तो उनकी कैटेगरी कम हो जाती है, वो यानी शिद्दत कम हो जाती है अल्लाह की तरफ से, वरना जिस कैटेगरी के वो समंदर में होते अगर उसी के साथ वो लैंड पे हिट करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो हम में से कोई बचे ही ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स होती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होता है कि जो रब इस हवा को ला सकता है ना इतनी तेज, वो इससे भी ज्यादा तेज भी कर सकता है। हवाओं की जो आवाजें इतनी खौफनाक कि इंसान कहता है कि अल्लाह, हवा आवाज ही सुन के दिल दहल जाता है और लगता है कि अब बस हमने नहीं बचना, अब ये अंदर आ गई हवा तो फिर क्या हाल होगा। तो वो ये समझते थे हम बड़ी चीज है, अपने घरों के अंदर चले गए। उनके वो वाले घर नहीं थे जो जैसे समूद ने तो बाद में बनाए ना, उन्होंने कहा ये मिट गए इस तरह हवाओं से, तो हम अब ऐसे घर बनाएंगे ना, हमारे घर तो उड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने पत्थरों को तोड़ तोड़ के पहाड़ों को तराश तराश के अंदर घर बना लिए कि अब कौन आके हमें पकड़ेगा। तो तुम अल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते हो, आज घर खड़े में और मकीन नहीं है, तो अल्लाह का मुकाबला करोगे? अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अपने लश्कर के साथ हलाक किया जिसको लोग मामूली समझते, हवा को क्या हम समझते हैं, हवा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझते ना हवाओं को, मतलब ठीक है हम जलजले को समझते हैं, हम और किसी आफत को समझते हैं कि ऐसी कुछ चीज आ जाए, पानी आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, ऐसे हो जाए, तो भाई वो तो चीज है। हवा को हम तो कुछ जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज जो देख भी नहीं सकते आप, सिर्फ महसूस होती है, उससे ही उनकी हलाकत कर दी, उसको ही हलाकत का सामान बना दिया। वो ऐसी हवाएं थी 8 दिन तक जब चलती रही ना, तो इनका एक एक फर्द, एक एक बंदा, कोई बच्चा ही नहीं, ना बच्चा ना बूढ़ा, ना मर्द ना औरत, वो जो ताकतवर अपने आप को समझते थे हवाओं के आगे, वो भी ऐसे बेबस हो गए। और इनकी सवारियां और इनके मुवैशी और इनके मालो मता को इस आंधी ने उड़ा उड़ा के वो हाल किया, सब रेत के नीचे दफन हो गए, कुछ रहा ही नहीं। कहाँ गई उनकी शानो शौकत, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई उनकी बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गए उनकी तकब्बुर, कहाँ गई वो ये कि हम जैसा कोई है ही नहीं। वो तो कहते थे हम जैसा कोई है ही नहीं, हमारे जैसा वो तो सामने आए, जैसे आज भी लोग समझते। और अल्लाह हू अकबर, आज का इंसान जो बहुत बड़के मारता है ना, बड़ी अपनी बड़ाइयां करता है, ये तो सिर्फ एक बिजली की मार है। हवा तो क्या चले, एक बिजली चली जाए, इंटरनेट चला जाए इनका, तो ये कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही बैठे रह जाते। अल्लाह हू अकबर। ये तो इनके लिए तो कोई जोर चाहिए ही नहीं इनको खत्म करने के लिए, जो आज का इंसान है। वो तो इतने इतने कदावर थे कि जैसे खजूर के तने खड़े हुए, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल ऐसे ही दी कि जैसे खजूर के तने हो, इस तरह पड़े हुए थे, क्योंकि इतने टॉल थे। आज क्या 6 फुट से ऊपर किसी का कद ही नहीं होता, बहुत बढ़ गया तो 6 फुट चला गया। क्या समझता है आज का इंसान अपने आप को? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर डरते थे ना, जब आसमान पे किसी बादल को भी देखते तो घबरा के कभी बाहर जाते कभी अंदर आते, जब तक वो बादल बरस ना जाता आपकी घबराहट घबराहट दूर नहीं होती। और आप फरमाते थे मुझे तो खुद नहीं पता कि शायद कि ये बादल वही हो जैसा कि कौमे आद के ऊपर आया था। अस्तग़फिरुल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होके इतना डरते थे, तो बाद वालों को कितना डरना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि ये हमारे लिए पास अजाब का पैगाम ले आया हो, हम डर ही जाएं। फिर भी नहीं डरते, डरते ही नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधी आती थी, तो तब भी आयशा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंधी अल्लाह ताला की खुशी के आसार से है, आंधी रहमत भी लाती है और अजाब भी लाती है। तुम आंधी को बुरा ना कहो और अल्लाह ताला से इसकी खैर का सवाल करो और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगो। एक बंदे ने आंधी के ऊपर लानत की, जैसे वो होता ना बुरा भला कहना शुरू जाते हैं, ये आंधी क्यों आ गई, उसके ऊपर लानत। तो आपने फरमाया आंधी पे लानत ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म की ताबे है, अल्लाह के हुक्म से चलती। जो शख्स किसी ऐसी चीज पे लानत करता है जो इस लानत की हकदार नहीं होती, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो लानत उसी के ऊपर पड़ जाती है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंधी को बुरा ना कहो, बल्कि जब तुम में से कोई कोई नागवार चीज देखे तो फिर दुआ करे उसकी खैर का, दुआ उसकी में जो खैर है उसकी दुआ करे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधियां चलती थी, ऐसे तेज झक्कड़ चलते थे, हवाएं चलती थी, तो फिर ये दुआ मांगा करते थे। हम सबको इस दुआ को याद कर लेना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर माफी है। देखिए आसानी दुआ, अल्लाह मैं इसकी खैर चाहता हूँ और जो इसके अंदर है उसकी भी खैर, व खैर मा अरसलता भी, और उसकी भी खैर जिसके साथ तूने इसको भेजा है। व औज़ुबी का मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा अरसलता भी, इसकी इसके शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। और अल्लाह जो इसमें है, वो जो बुराई इसके अंदर, जो भी इसके अंदर हो शर, उससे भी, और जिस चीज के साथ ये भेजी गई है उसकी बुराई से भी पनाह में आता हूँ। तो आयशा रजी अल्लाह तआला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछती हैं कि या रसूलल्लाह, आप इतने खौफजदा हो जाते हैं, लोग खुश होते हैं जब बादल आते हैं, आप खौफजदा हो जाते हैं, तो आपने यही फरमा। कौम हूद ने भी अपनी बादल देखे थे तो वो खुश हो गए थे कि ये हमारे ऊपर बरसेंगे, हमारे ऊपर बारिश लाएंगे। तो फिर देखो उनका क्या हाल है। तो रीह जो होती है ना, रीह याद रखे, रीह ऐसी हवा होती है, अनलेस उसके साथ कुछ खैर या तय्यब रीह का वर्ड आया, लेकिन रीह वो होती है जो नुकसानदेह होती है, जो अजाब लेकर आती है। ठीक है, जो रिया होती है या के बाद अलिफ, वो अच्छी हवा होती है, जो खुशखबरी लाती है, रहमत की हवा होती है। तो अल्लाह ताला ने तो अभी अपने हवा के खजानों में से कुछ ज्यादा भेजी नहीं थी हवा, आद के लिए सिर्फ इतनी हवा खोली गई थी। हदीस में आता है जितनी अंगूठी का हलका हो, ये आपकी रिंग है ना, इतनी सी, बैल के नथने के बराबर इतनी सी हवा खोली थी। यहाँ अंगूठी तो आपको नजर आती है, उतनी सी हवा, इतनी सी सिर्फ खोली थी उन्होंने। क्या सोचा और क्या हुआ। बाज दफा इंसान किसी चीज को अपने लिए खैर समझता है, उसमें शर होता है, और बाज दफा इंसान किसी चीज में शर समझता है और उसमें खैर होती है। हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, क्योंकि हर चीज का मामला क्या है, ये अगली आयत, तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बि अम्री रब्बी, कि हलाक करती है हर चीज को अपने रब के हुक्म से। चलता किसका हुक्म है, हवा वही हवा खैर बन जाए तो भी रब का हुक्म होगा तो खैर बनेगी, वही हवा शर बन जाए रब का हुक्म होगा तो शर बन जाएगी। चीज एक ही है, अल्लाह चाहे तो उसको खैर कर दे, अल्लाह चाहे तो उसको शर कर दे। तो असल क्या मामला क्या है, अमरी रब्बी, रब का जो अमर है ना वो मैटर करता है। आप देखें एक ही औलाद है, एक को मिली ऐसी नाफरमान के माँ बाप जो है रोने लग गए, जैसे हमने पिछले ही सबक के अंदर पढ़ा था कि उन्होंने कहा वही ला कहा है तेरी हलाकत, तेरी बर्बादी, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू क्या बातें कर रहा है, जो माँ बाप के लिए तकलीफ का बायस बन गई। एक ही औलाद है, वो माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बन गई, सदका जारिया बन गई। एक ही हवा होती है, रहमत की बारिश ले आती है, जमीन को हरा भरा कर देती है, इंसानों की प्यास बुझा देती है। एक ही हवा है जो अजाब बन के आ गई। तो फर्क कहाँ पे होता है, फर्क है अमरी रब्बी में। इस बात को ही नहीं हम समझते कि असल चीज अल्लाह का अमर है, अल्लाह का अमर है जो चीज को अच्छा या बुरा कर सकता है। हम चीज के ऊपर गौर करते रहते हैं और उसको सोचते रहते हैं, ये चीज बुरी, ये चीज अच्छी, ये चीज ऐसी, ये चीज वैसी, नहीं वो चीज नहीं है। अमरे रब को देखें और उससे पहचाने अपने रब को, कि अल्लाह ताला चाहेगा तो मेरे लिए चीज ये खैर बन सकती है, अल्लाह ना चाहे तो मेरे लिए ये चीज शर बन जाए। तो अल्लाह के अमर को समझा करें कि सब ताकत मेरे रब के हाथ में, सब ताकत। हम समझ रहे हैं ये तो चीज खैर ही होती है ना, इससे खैर ही निकलेगी ना, और इससे क्या शर हो सकता है, हवा ही है ना, कोई सोच ही नहीं सकता इससे कोई शर भी हो। बादल है, बादल तो बड़ी अच्छी चीज होती है, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोग खुश होते हैं इसको देख के ना, तो वाकई सब खुश ही होते हैं, लेकिन वो भी शर बन सकता है। अगर अमरी रब है कि वो शर बने तो वो शर बन जाए। आप देख लेना मूसा अलैहि सलाम के पास आसा था, वो ही आसा वो फरमा रहे कि मैं पत्ते झाड़ता हूँ, इसे बकरियों को उतलाता हूँ, मैं टेक भी लगाता हूँ, वो ही ऐसा कैसे सांप बन गया। अल्लाह ताला है जिसको जो चीज कर दे, क्या बना दे किसी चीज को। लोगों का पता चलता है सवारी खरीदी, इतनी खुशी हुई, वे बाइक खरीदी है बहुत खुशी के साथ, बड़ा शौक था, या किसी ने स्पोर्ट्स कार खरीदी है, पता नहीं वो ही उसकी मौत का काम है, उसी में उसको मौत आ जानी, उसकी गलत खुशियां कर रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें इंसान सोचता है ये बड़ी अच्छी है, उसके अंदर इशारा है, क्योंकि अल्लाह ने डाल दिया उसके अंदर, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बना दिया उसके लिए। इसीलिए हर चीज रहमत भी हो सकती है, जहमत भी हो सकती है। इंसान का पैसा भी, पैसे तो खैर है, इसको खैर कहा गया, लेकिन उसके लिए अजाब का सबब बन सकता है। तो ये अमरे रब होता है, अमरे रब को पहचाने, इसीलिए अल्लाह के आगे झुके, कोई चीज इटसेल्फ ये ताकत नहीं रखती कि वो मेरे लिए खैर या शर का बाइस बने जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। समझ आई बात? तो हलाक कर रही थी हर चीज को, यानी मैंने आपको बताया ना, कोई चीज उसने छोड़ी ही नहीं, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। अब उनमें बेबीज भी होंगे, उनके अंदर बूढ़े भी होंगे, उनके अंदर ताकतवर भी होंगे, कमजोर भी होंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि किसी को छोड़ना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। वो ऐसे हो गए थे कि उनके मकानों के, जो उनके रहने की जगह थी, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिस चीज के ऊपर से गुजरी उसको तहस नहस कर दी, कोई जी रू, कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं बचा। सिर्फ पटकती नहीं थी, उड़ा उड़ा के ले जाती थी। और क्या हवा में ये ताकत है? नहीं, ये अमरे रब था। अल्लाह ही चाहे तो हवाओं को जिधर को चाहे रुख फेर दे, अल्लाह ही चाहे तो उनकी स्पीड को जितना चाहे तेज कर दे, स्लो कर दे। हम इस पे तवज्जो नहीं देते। हवा चल रही हो, हाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही, अल्लाह तूने इतनी अच्छी हवा चला दी, अल्लाह तूने हमारे लिए ये राहत का पैगाम कर दिया, सुकून का बायस बना दिया। वो ही हवा तेज वो कर दे तो फिर मुसीबत बढ़ जाए, हम फिर भागते अंदर की तरफ जब ऐसी आंधी आती है। हमने देखा ना कई जगह पे, हमें वीडियोस भी आती हैं, वो आंधियां उड़ा उड़ा के चीजों को उलट रही हैं, गाड़ियां भी उलट देती हैं। ये तो हम अपने सामने देखते हैं, लोग पोल्स पकड़ के खड़े में उड़े चले जा रहे हैं, उनकी इमारतों के सिवा सब खत्म हो गए। फास भी अमरी रबे फास भाउला युरा इल्ला मसाकिन, तो उनके सिर्फ मस्कन रह गए थे, घर रह गए थे, कुछ और नहीं नजर आता था, सिर्फ उनके घर नजर आ रहे थे बस, और कुछ नहीं था, सब रेत के नीचे पूरा इलाका। कदालिक नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, ये होता है बदला मुजरिम कौम का। इस तरह अल्लाह ताला बदला लेता है मुजरिम कौम से जो नाफरमान है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। मुजरिम होना दुनिया में, किसी के मुजरिम हो किसी मुल्क के तो शायद बच सकते हो कि कहीं जाके छुप जाएं, कहीं भाग जाएं, कहीं किसी के किसी और मुल्क में जाके पनाह ले लेते हैं, असाइलम ले लेते हैं, वहां पे मतलब कि कोई हमें पकड़ ना सके। तो दुनिया में तो मुजरिम वाकई कहीं भाग सकते हैं या मार ही जाते हैं बाज दफा मुजरिम, और फिर क्या पकड़ेंगे उनको। लेकिन अल्लाह के जो मुजरिम होते हैं ना, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। फिर भी हमारा ये हाल होता है कि इंसान दुनिया के कानून को तोड़ते हुए तो डरता है कि हाय मुजरिम कहलाऊंगा और हाय फिर मेरी पकड़ ना हो जाए, लेकिन अल्लाह के कानून को तोड़ते हुए कभी नहीं डरता। ये मेरा अल्लाह मुझे पकड़ लेगा तो क्या होगा, मैं उसका मुजरिम बन गया तो क्या होगा, फिर तो कोई भागने की जगह भी नहीं, फिर तो कोई छुपने की जगह भी नहीं, फिर तो कोई पनाह देने वाला भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह हम जजा देते हैं मुजरिम कौम को। अल्लाह हु अकबर। अबू दरदा दमिश्क में खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ दमिश्क वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि तुम वो जमा करते हो जो खाते नहीं, यानी खा ही नहीं सकते, और ऐसी इमारतें बनाते हो जिसमें तुम रहोगे नहीं, यानी इतनी आलीशान, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी के उसके अंदर रह ही नहीं सकते, और तुम उम्मीद रखते हो उसकी जितना तुम जी नहीं सकोगे, यानी लंबी लंबी प्लानिंग्स हैं, उतना जीना भी नहीं है। तुमसे पहले के लोग जमा करते थे, फिर समेट समेट के रखते थे और बहुत मजबूत बनाते थे, उम्मीदें लगाते थे और लंबी उम्मीदें लगाते थे, तो फिर जो उन्होंने जमा किया सब बर्बाद हो गया और उनके घर ही उनकी कब्रें बन गए। जैसे ऊपर होता है ना, जलजले आते हैं, ऊपर ही घर गिर जाता है और अंदर ही दब जाते हैं लोग, और इनकी ख्वाहिशात उनके लिए धोखे का सामान बन गई। सुनो, आद ने आदन और ओमान के दरमियान सारा इलाका अपने कब्जे में किया हुआ था, उनके लश्कर भी थे, उनके घुड़सवार भी थे, तो कौन मुझसे आद की मीरास को 2 दिरहम ने खरीदेगा। अल्लाहु अकबर। कौन है जा आज उनकी जायदादों को 2 दिरहम में भी, 2 दिरहम तो कुछ भी नहीं होते, 2 दिरहम दे के ही खरीद ले, कोई उनका खरीदार नहीं। वो जो इतने अपने आप को बड़ा समझते थे, जो इतना अपने आप को चीजें समझते थे, जो कहते थे हमारे जैसा ही कोई नहीं, जो समझते थे कि उनके कोई खत्म नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, ले आओ अजाब, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये कहा करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर इबरत का निशान बना दिया। आज भी उनका खरीदार उन जमीनों का कोई नहीं। ये तो अबू दरदा अपने जमाने में कह रहे हैं, हजारों साल गुजर गए, कोई खरीदार नहीं, वहां पे कुछ उगता नहीं, कुछ बना नहीं सकते, कोई चीज ठहर ही नहीं सकती। क्या इन निशानियों से हमारी आंखें नहीं खुलती कि अल्लाह के मुजरिमों का अंजाम क्या होता है? आम जुर्म करते हैं, कानून तोड़ते हैं अल्लाह का, और बेबाकी से तोड़ते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, धड़ल्ले से करते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसके उलट करते हैं, और बड़ी अपने आप को चीज समझते हैं कि मुझे कौन कुछ कह सकता है, मुझे कौन पकड़ सकता है। अपने आप को मुजरिम नहीं गर्दानते। अगर अपने आप को मुजरिम समझते तो रोते हम अल्लाह के आगे, अगर हमें जरा पशेमानी होती तो हमें चैन ना आता रातों को, हम खड़े हो जाते अल्लाह के हजूर और माफिया मांगते। अगर हम अल्लाह के मुजरिम खुद को समझते तो हम कभी ना डर ना होते। अगर हम अपने आप को अल्लाह के मुजरिम समझते तो हम अल्लाह की फरमाबरदारी से और उसके कलाम से कभी दूर ना भागते, बल्कि आते अल्लाह की तरफ, बढ़ते उसकी तरफ, झुकते उसकी तरफ, डरते उससे, उसके कलाम को पढ़ते तो रोते, रातों को हमें चैन ना आता। मगर देख लो हम कैसे लोग हैं, क्या अल्लाह के कानून को तोड़ते भी हैं और फिर खुद को मुजरिम समझते भी नहीं। नहीं समझते हमने कुछ गलत किया, बल्कि सब खुश हैं इस बात पे कि हम ठीक ही तो हैं। जैसे ये कौमें थी जिन्होंने अपने आप को समझा कि हम सही तो हैं, हम क्या गलत हैं, इसीलिए तो आराम से मांगते थे लाओ अजाब ना, अगर यानी हम पे अजाब कहाँ आएगा, हम क्या गलत हैं। आज का इंसान भी बड़ा ही नादान है कि वो अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बाहर समझता है, और ये समझता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, करके भी समझता है, अपने अल्लाह ताला की नाफरमानियां करके भी समझता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरा करते हैं, मैं क्या गलत हूं, लोग तो मेरे से भी ज्यादा गलत है। वलकद मक्कन्नाहुम फीमा इन मक्कन्नाकुम फी, अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को फरमाया कि और अलबत्ता तकी बसाया हमने उनको, यानी कि इनको आद को, उसमें जो नहीं बसाया हमने तुमको उसमें, यानी वो शानो शौकत, वो दुनिया की रेल पेल, वो मजबूती, वो इमारतें, वो रहन सहन, वो तहजीब उनकी, वो तो बहुत आगे थे, तुम तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले में। तो आप देख लेना कुरैशी मक्का के पास कौन से क्या चीज थी, उन्हें तो ना कुछ ऐसे कोई इमारतें, ना आज भी देखे कुछ भी नहीं, वहां पे तो कुछ भी नहीं था, एक काबा के अलावा वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके ऊपर ये बड़ा फखर करते या कुछ कहते, ना खुद ऐसे कोई बहुत बड़े जायंट्स थे कि इतने उनको देख के देव हैकल हों के उनको देख के लोग डरे, ऐसा भी कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो हमने जैसा उनको बसाया था, जैसे उनको कुदरत दी थी ना, तुम्हारे पास तो वैसी कोई चीज भी नहीं। और आज तक भी मैंने आपको ये बता दी ना, आपका इंटरनेट और बिजली चली जाए, कुछ भी नहीं है, दुनिया एट हॉल्ट, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपके जहाज उड़ेंगे, ना आपके स्टोर चल सकते हैं, ना आपके दफ्तर चल सकते हैं, ना आपका कोई कारोबार चल सकता है, ना कोई काम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हत्ता तो हमारे दरवाजे भी इस तरह से ही खुलते हैं, हमारे घर की चीजें सारी उन चीजों से चलती हैं, बाज जगह तो झूले भी इलेक्ट्रिक के हैं। इंसान बिल्कुल देख ले, पेट्रोल डालना है गाड़ी में तो वो भी इलेक्ट्रिक से ही है ना, आपकी गाड़ियां चल सकती, कुछ भी नहीं। हम तो इतने ज्यादा मोहताज हैं, इतने हमारे हाथ पैर समझ लो तोड़ के हमने अपने आप को रखा हुआ है, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो लोग, उनको कहा गया कि ऐ कुरैश मक्का, तुम क्या चीज हो, जितनी नेमतें हमने उनको दे रखी थी, और चार चीजों में तो वो खास तौर पे उनका नाम आता है कि उनको मवेशी दिए हुए थे, लाइफ स्टॉक, और उनके बेटे थे, यानी उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी था, बागात थे, यानी उनके पास रिस्क के भी फरवानी थी, बाग है तो इसका मतलब है कि रिस्क है ना इतना, और हरियाली भी इसका मतलब, और चश्मे थे, ये चार चीजें उनके लिए पास बहुत थी। चश्मे तो पानी है, तो इसका मतलब है कि उनका पानी है तो जाहिर है ग्रीनरी भी होगी, मौसम भी अच्छा होगा, और बाग भी होंगे और खेतियां भी होंगी। तो दुनियावी एतबार से, जिस्मानी तौर पे, कदखाट में, ताकत में और समझ बूझ में वो बहुत आगे थे। तभी तो उन्होंने देखे, ये उनके पास अकल समझ थी तो इतने इतने मॉन्यूमेंट्स बनाए ना उन्होंने। लेकिन अल्लाह ताला के आगे कुछ खड़े ना हो सके, उनके रिसोर्सेज उनको बचा ना सके। अफ़ीदा, और हमने उनके लिए बनाए थे कान भी, आंखें भी, दिल भी। ये किस लिए दिए थे? अल्लाह ताला ने बताया कि हमने उनके आंख, कान और दिल दिए थे, लेकिन वो कैसे थे? फमा अग़ना अन्हुम समउहुम, तो उन्होंने काम नहीं लिया कानों से, और अबसारुहुम, और अपनी निगाहों से, वला अफ़ीदतुहुम, और ना उन अपने दिलों से, मिन शेई इन, कुछ भी काम ना लिया। जब वो हमारी आयात के अंदर झगड़ते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं काम लिया। लिया तो था उन्होंने, वो इतने बड़े बड़े यादगारें नहीं बना ली थी, इतने बड़े बड़े सतून नहीं खड़े कर दिए थे, किले खड़े किए हुए थे, और तरक्की की भी थी, तो लिया ही था ना। हम तो ये सोचते हैं ना, हमारे नजदीक तो देखें आंखों कानों का यही काम है कि भाई, और दिमाग होना और ये होना, इसका मतलब यही है कि हम बड़ी दुनिया में तरक्की कर लें। देखो वाह वाह क्या तरक्की की इन्होंने, वाह वाह क्या इन्होंने अपनी रिसोर्सेस से काम लिया, क्या जबरदस्त चीज है ये, कौम कितनी बड़ी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत हासिल कर ली। तो हम सोचते हैं कि इन्होंने, इनके दिमाग देखो कितने तेज है, इन्होंने देखो कितनी तरक्की की है। हमें लगता है कि इन्होंने वाकई अपनी इन चीजों से बहुत फायदा उठाया, जो अल्लाह ताला ने इनको जो कान आंखें समझ दिए, इससे बड़ा इन्होंने फायदा उठाया। हालांकि अल्लाह के नजदीक कोई भी फायदा नहीं उन्होंने उठाया अगर उन्होंने इन कान आंखों और दिल के होने के बावजूद अल्लाह की आयात के अंदर झगड़े किए, उनका इनकार किया और उनको नहीं माना, तो इसका मतलब आंखों से उन्होंने कुछ नहीं फायदा उठाया, कानों से कुछ फायदा नहीं उठाया, दिल में कोई बात ही नहीं उनके गई, दिल से कुछ फायदा नहीं उठाया। तो अल्लाह के नजदीक आप अपनी आंखों से, कानों से, दिल से फायदा उठाने वाले तब हैं, और इन चीजों को अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि ये आंखें रब की आयात को देखें, चाहे वो कायनात में, चाहे वो कुरान में, इनको देखें, इनसे रब को पहचाने। कान है इसके सुने और रब को पहचाने, और दिल है इनके अंदर बात को लेकर जाएं, एक कान से सुन के दूसरे से ना निकाल दे, दिल में भी लेकर जाएं, दिल में लगे बात, दिल में जगह पकड़े बात, तब वह समझ लें कि आपने इन चीजों से फायदा उठाया जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। वरना चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी के माहिर हो जाएं, आपने कितनी डिग्रियां कर ली हैं, इन आंखों से पढ़ पढ़ के आपने किताबें इधर रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, इन कानों से आपने कितने लेक्चर सुने हुए हैं, बड़े बड़े साइंसदान आप बन गए, और बड़ी आपको समझ भी आ गई, दिल भी आपका ऐसा, सब चीजें समझ आ गई, सारे उलूम आपने समझ ली हैं, आप अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनसे काम नहीं लिया। अब देख लें हमारा काम लेना, हम क्या समझते हैं कि काम लेना क्या होता है, और अल्लाह ताला के नजदीक काम लेना क्या होता है? अल्लाह के नजदीक काम लेना ये है कि आप इन फैकल्टी से अपनी, इन अपने आज़ा के साथ अल्लाह ताला को पहचाने, उसकी आयात को समझें, उसकी तरफ कदम को बढ़ाएं, ये है इनसे काम लेना। इसके लिए अल्लाह ताला ने बेसिकली दिया, ये मना नहीं किया कि आंखों से कुछ ना देखो, अंधे बन के बैठ जाओ, सिर्फ कुरान पढ़ो, कानों से ये नहीं कहा कोई भी बात ना सुनो, लेकिन बेसिक इनको इसलिए दिया, अगर इनसे असल काम ही ना किया तो फिर क्या किया। आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी को सारा दिन चमकाती रहते हैं, सारा दिन धोते रहते हैं, उसके टायर धो लिया, अंदर से धो लिया, बाहर से धो लिया, बड़ी इसकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप इस गाड़ी को कभी बाहर ही नहीं निकालते, कभी इसमें सवार ही नहीं होके कहीं गए, ये गाड़ी आपको जहां आपने पहुंचना है वहां ही नहीं लेकर गई, तो फायदा क्या इस गाड़ी का। ये तो एक खोखला ढांचा है जो खड़ा हुआ है, अब आप उसकी कितने भी कहते जाएं कि देखो कितना मैंने चमकाया हुआ है, देखो मैंने कितना इसको अच्छा रखा हुआ है। इसी तरह ये मिसाल ले लें कि देखें आप आंखों से आप देख रहे हैं, आप पढ़े हैं, आप उलूम और पढ़ रहे हैं, आप दुनिया को भी देखें, कोई हरज नहीं, लेकिन आपका असल काम तो यही था कि ना आंखों से कुछ अल्लाह के कलाम को तो पढ़ते, उसकी आयात को तो देखते, उसकी बात को तो समझते, सुनते तो सही, दिल में तो लेकर जाते, दिल समझ के लिए होता है, दिल समझता है चीज को, इसको समझ तो हासिल करते, वो ही ना किया तो आपने अब पूरी दुनिया आप घूम आए हैं और पूरी दुनिया के आपने अलूम ले लिए, और आप वो कहते हैं हम ट्रैवल करके जी मैंने सारी दुनिया देख ली, और तुमने दुनिया देख ली, तुमने अल्लाह के कलाम को ना देखा और उसकी निशानियों से उसको ना समझा, तो तुम उसके नजदीक अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, और दिल नहीं है तुम्हारे पास। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं, उनके पास दिल है लेकिन वो समझते नहीं, तो फिर इंसान अल्लाह ताला के नजदीक ऐसा हो जाता है, उलाय का कल अनाम, वो तो चौपायों की तरह मैं बल हूं अदल, बल्कि उनके से ज्यादा गए गुजरे हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो गए, अगर तुमने इन आंखों से ये फायदा ना उठा। मैंने जैसे आपको गाड़ी की मिसाल दी, वो गाड़ी इसलिए थी, उसका मकसद क्या था, आपको यहां से वहां पहुंचा दे, और आपने उसे वही ना काम लिया, अब वो कितनी खूबसूरत लग रही है उससे कोई फायदा नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया हम घूम आए, सारी दुनिया के हमने वेकेशंस कर ली, हमने अल्लाह ताला को ना पहचाना तो हमने इन कामों से कोई काम, इन आंखों से कोई काम नहीं लिया, इन कानों से कोई काम नहीं लिया, हम दुनिया जहान की न्यूज सुन रहे हैं, तबसरे सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं सुन रहे इन कानों से, चुगलियां और गीबतें सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं सुना, सिर्फ अल्लाह का कलाम ही ना सुन के दिया, अल्लाह की बात ही ना सुन के दी, अल्लाह के नजदीक तो बहरे हो, समझ लो है, कान है या नहीं है एक बराबर हो, दिल है या नहीं है एक बराबर, फिर भी आज कितने लोग हैं ये समझते हैं कि ये कान अल्लाह ने किस मकसद के लिए दी, आंखें किस मकसद के लिए दी, ये दिल मेरे पास किस बात के लिए, मैंने अल्लाह के कलाम को ही ना समझा तो क्या है ये मेरा दिल। सारी सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, 70 70 साल के, 60 60 साल के हो जाते हैं, फिर भी इन आजा से, ये आजा दुनिया देख देख के कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो गई, कानों से सुनता नहीं, सिर्फ दुनिया की बातें, अब तो कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन ये दिन ना आके दिया कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की निशानियों को देखते या उसकी आयात को समझते, उन्होंने भी नहीं किया था, और आज कितनी दुनिया इसी रास्ते पे, ये कोई नई कहानी नहीं है आद की, ये तो कहानी चलती ही जा रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ऐसे लोग थे और आज भी हैं, इनको तो कहा गया, वो उनके बारे में तो ये कहा गया था कि वह इजा बतश तुम, बतश तुम जब्बारीन, जब वो पकड़ते थे ना, जब तुम पकड़ते तो पकड़ते जब्बार बन के, इतना सख्त पकड़ते ना, ना किसी को नहीं, सजाएं ऐसी देते थे, ऐसी पकड़ करते थे कि खुदा की पनाह, जब्बार बन के पकड़ते थे, और ऐसे अपने आप को समझते थे कि हम कितने कवि हैं, हम क्या चीज है, खुद पसंदी का शिकार थे ना, बहुत अपने आप के अंदर बड़ा मान था, इसीलिए तो यादगारें भी ऐसी ऐसी बनाई हुई जो आज तक खड़ी हुई है, रेत के नीचे खड़े हुए मोहल्लात और उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके सतून आज तक खड़े हैं उस शहर में, तो शहरों को भी उन्होंने ऐसे आबाद किया, दूर दूर तक उनकी मुमलिकत थी, ताकत भी बहुत थी, लेकिन ना अकल ना समझ ना कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल की, अल्लाह की आयात का फिर भी इनकार ही करने वाले थे, उन्होंने कुछ काम ना लिया कि अगर उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार ही करना था तो ये बात है यहाँ पे कही गई कि कुछ काम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि इनसे काम लेना क्या था कि अल्लाह की आयात को मानते, उनके अंदर बहसे ना करते, उनको रिजेक्ट ना करते। तो हम में से कितने हैं जो फायदा ले रहे हैं? अल्लाह अकबर। या फिर ये कान और आंखें और दिल कहीं और ही, समझ कहीं और ही यूज हो रही है, आंखें और कान कहीं और ही यूज हो रहे हैं। कितने लोग हैं हम में से? वहां कभी हिम्मा कानू भी यस्ताजी, उन तो फिर घेर लिया उनको जिसका वो मजाक उड़ाते थे, वो अजाब उनको आ लिया। यहां तक आद की स्टोरी मुकम्मल हुई। एक वो जिन्होंने इंसान होते हुए, अकल होते हुए, समझ होते हुए, अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात में अशरफ अल्लाह ताला ने टॉप पे इंसान को बनाया। किस वजह से वो अशरफ है? अपनी ताकत की वजह से नहीं, अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से नहीं, अपनी अकल की वजह से। उन्होंने अपनी अकल ना इस्तेमाल की, समझ ना इस्तेमाल की। ये कान आंखें हैं ना, ये डोर्स हैं अकल के, इनके जरिए अकल तक बात जाती। आंखें देखती हैं, अकल प्रोसेस करती, कान सुनते हैं, अकल प्रोसेस करती, दिल के अंदर बात जाती, समझ आती। ये इंसान की बड़ाई और उसकी इज्जत, उसका ऑनर ये है कि वो बहुत अकलमंद है। लेकिन इंसान हो के भी कुछ लोगों ने अपनी ना समझ इस्तेमाल की, ना अपने कानों आंखों को सही इस्तेमाल किया, ना अपने दिल से समझ हासिल की, और बर्बाद हो गए। उनके मुकाबले में एक वो भी मखलूक है जो कि इतनी समझ नहीं रखती, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आगे बात की है कि उन्होंने हिदायत पा ली। वलकद अहलकना मा हौलकुम मिनल कुरा, अभी ये बात आ रही, आगे बात आ रही इसकी दूसरी मखलूक की। तो हमने हलाक किया, अब कुरैश मक्का को कहा जा रहा है कि हमने हलाक कर दिया जो तुम्हारे आसपास बस्तियां हैं ना, बहुत से यार ऐसी हलाक की। समूद को वो देखते थे, गुजरते थे ना, तो समूद के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबूक की तरफ जा रहे थे तो हिजर की बस्ती से गुजरे थे समूद के, तो जब ऐसी बस्तियों के पास से गुजरे, आप भी याद रखें जो ऐसे तबाह हुई पड़ी हैं और उनके खंडरात खड़े हुए हैं और कहीं पता नहीं किस हजारों साल पहले, तो क्या करना चाहिए, हमारा क्या रवैया होना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ से जल्दी गुजर जाओ, यहाँ की कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना करो, उनके पानी को भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोते हुए गुजरो, रोना ना आए, रोने की सूरत ही बना लो, यानी फिर बड़े पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं है आपको। वहां पे बड़े पिक्चर्स ले रहे हैं, बस हंसी खेल हो रहे हैं, देखो जी ये देखो, वाह वंडर, ये देखो कैसा वंडर है। नहीं, रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम है कि ये देखो ये हजारों साल पहले ये चीजें बनाने वाली कौमें कैसी ताकतवर और कैसी जबरदस्त होती थी, आज उनका हाल क्या है कि उनमें से कोई भी नहीं बाकी, उनकी नस्लों को भी खत्म कर दिया गया, कोई भी नहीं है, मिट गए वो ताकत। ये अपने आप को ताकत समझते थे ना, वो ताकत कितनी बड़ी है जो अल्लाह की ताकत है जिसे इनको मिटा के रख दिया। तो अल्लाह तेरे अजाबों से हम तेरी पनाह मांगते हैं, तेरी नाराजगी से तेरी पनाह में आते हैं। उनको देख के रोना चाहिए ना कि हंस रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, जाके वहां पे बैठ रहे हैं और बड़े बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। वो अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को फरमाया हमने हलाक कर दी जो तुम्हारे आसपास की बस्तियां, तुम देखो तो सही, गौर करो। वो अब वो हिजर की बस्ती के पास से भी गुजरते थे समूद के पास से, इसी तरह वो जाते थे कौमे लूत की बस्ती का उनको पता था, कौमे सबा का उनको पता था, यमन की तरफ जाते थे, उस वो कैसे तबाह बर्बाद हो गई। तो कितनी बस्तियां बर्बाद कर दी अल्लाह तला ने तुम्हारे आस पास ही। वसर्रफ नल आयाती लअल्लहुम यरजिऊन, और फेर के हम लाते हैं आयात ताकि वो लौट आए, वापिस पलट आओ अल्लाह की तरफ, इसलिए ये बताई जाती हैं बातें। पलट आओ, छोड़ दो वो रविश, छोड़ दो वो रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। ये इसलिए बताई जाती, ये हमें कहानियां सुनाने के लिए नहीं, जैसे हम बच्चों को कहानी सुना देते हैं कि चिड़िया एक कब्बे की कहानी, चलो जी ठीक है कहानी खत्म। तो हम भी तो कितनी दफा आद की कहानी सुन चुके, चलो जी कहानी खत्म हुई, इसलिए नहीं। लाल लहू भी अर्जुन, शायद कि वो लौट आए, शायद इनको समझ आ जाए, शायद इनको पता चल जाए, शायद इनके दिल को कोई बात लग जाए, शायद कोई दिन तो हो इनको एहसास हो जाए कि नहीं पलटना है हमें। अल्लाह हम यर्ज हूं, मजे के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं दी जा रही। एक तुम्हें याद हो जाए कितनी कौमें गुजरी थी। अच्छा जी, अब मुझे क्विज होगा तो इसलिए मैं बता सकूं क्विज के अंदर, या कोई सवाल करेगा तो मुझे भी पता होना चाहिए ना कुरान के अंदर कौन कौन सी कौमों का कैसे जिक्र है। मैंने या तर्जुमा याद कर लूं या मैं इतने नंबर ले लूं, इसके लिए नहीं है ये किससे, इसलिए कि इबरत पकड़ के वापिस पलट आओ। सिर्फ इबरत पकड़ के ही नहीं बैठ जाना, सबक लेके नहीं बैठ जाना। देखो एक कौम तबाह हुई, हाँ वाकई बड़ी कौमें तबाह हुई, इस तरह के कमेंट्स करके नहीं बैठ जाओ, पलटो अल्लाह की तरफ, शायद वो पलट आए, शायद वो लौट आए। मेरा रब तू कितना करीम है, कुर्बान जाए कि वो रब कितना शफीक है, कितना मेहरबान है, कैसे कैसे समझाता है। हम पलट पलट के लड़ते हैं, फेर फेर के लड़ते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, कभी कौमों के ऊपर अजाब को बता के समझाया गया, कभी अजाब की बातें बता के समझाया गया, कभी जन्नत के किस्से बता के समझाया गया, कभी जहन्नुम की बातें बता के समझाया गया, कि कभी कयामत की हौलनाकी बता के समझाया गया। किसी पे तो पलट आओ, या कहीं पे भी नहीं पलटना, जिंदगी के किसी स्टेज में तो सोच लो कि बस है, अब पलटने का वक्त है। मेरा रब मुझे किस किस तरह समझा रहा है, लेकिन क्या हो गया हमारे दिलों को, इतने सख्त हो गए कि इतनी बातें बताई जाती हैं असर फिर भी कुछ नहीं, इतने किस्से बताए जाते हैं, चलो किस्सों से ही समझ लो। ये तुम्हारे जैसे ही इंसान थे ना, उनके भी शबो रोज गुजरते थे, उनके भी बच्चे थे, उनके भी काम काज थे, उनके भी कारोबार थे, उनके भी तमद्दुन था, उनका भी कल्चर था, वो भी बड़े प्राउड थे, उनके भी शादी ब्याह थे, उनके भी सारा कुछ इसी तरह थे जैसे तुम्हारे थे। फिर देखो चंद मिनट के अंदर कैसे मिट गए वो, किसी को उठा के ऊपर से पटखाया गया, आसमान से उठा के नीचे पटखाया गया, किसी को चीख का अजाब आ गया, किसी के ऊपर तूफान का अजाब आ गया, कोई गर्क हो गए पानी के अंदर, मैं फिर भी समझ नहीं आती, फिर के अल्लाह ताला लाता है। अक्लमंद वो होता है जो दूसरे से सबक हासिल कर ले, इससे पहले कि वो खुद कोई दास्तान बन जाए, वो अकलमंद होता है। लेकिन देखो हम कैसे लोग हैं कि हम फिर भी नहीं समझते। फलाउला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि कुर्बानन आलिया। अल्लाह ताला ने फिर एक सवाल पूछा है, सवाल पूछा है कि फिर क्यों नहीं मदद की उन हस्तियों ने जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा इलाह बनाया हुआ था तकर्रुब के लिए। तो ये नहीं कहते थे कि ये इलाह हैं, बल्कि इलाह इनको बनाया हुआ था कि ये अल्लाह के करीब हमें करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करने वाली हस्तियां हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का भी कहते थे। तो इनके शिर्क की बात की जा रही है कि देखो इन्होंने उन माबूदों को बताया हुआ था कि ये हमारी मदद करेंगे, आखरत में भी हमें अल्लाह के पास बचा लेंगे और दुनिया में भी हमें अल्लाह के तकर्रुब नसीब होगा इनके जरिए, हमारी इनके आगे इनकी अल्लाह के आगे, यही है ना बात। देखें वो ये नहीं कहते थे कि कायनात को इन्होंने पैदा किया है, जमीन आसमान को इन्होंने पैदा किया, वो ये कहते थे अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन ये बस हस्तियां हमें अल्लाह के करीब करती हैं। तो फिर ये बताओ कि जब इनके ऊपर अजाब आ रहा था तो वो हस्तियों ने इनकी मदद क्यों नहीं की, आखरत में तो जाके क्या मदद करेंगी, यहीं पे उनको अजाब से बचा लेते, आखरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। वो भी सोचते थे ना कि हम डायरेक्ट अल्लाह तक तो नहीं पहुंच सकते, ये हस्तियां ही हमें पहुंचाती, ये नहीं शिर्क तो और क्या, उनके आगे झुकते थे, उनकी पूजा करते थे, ये खुश हो गए तो ये हमें अल्लाह के पास भी सुखरू करा देंगे, वहां पे भी हमारी हमने इनके पीछे पीछे चल पड़ना है, बस इनका दामन पकड़ लेंगे, ये हमें पार करा देंगे वहां पे भी। तो फिर इनको क्यों नहीं उन्होंने बचाया उन हस्तियों ने, देखो कितना लॉजिकल सवाल है ना, कहाँ थी भी वो हस्तियां जिनके आगे ये झुकते थे, जिनके आगे ये दुआएं करते थे, जिनको इन्होंने सफारशी समझते थे, वो हस्तियां कह देती ना अल्लाह को, अल्लाह ताला इन्होंने तो हमें बड़ा पूजा है अल्लाह, इन्होंने हमें बड़ा खुश किया, तो इनको अजाब ना देना, वो कहती ना हस्तियां, वो अभी तुम कहते ना आखरत में हमारे लिए या हमारे लिए कुर्ब का जरिया, तो चलो वो तो एक ऐसी बात है जो बात, अब आप कोई देख तो नहीं सकता उसको ना, लेकिन अजाब को रोक के दिखा देते। इनके ऊपर तो अजाब नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि ये इनकी पूजा करते थे जिन्होंने इनको बचाना है, जो अल्लाह के पास बड़े पहुंचे हुए थे। बल दल्लुआन हूँ, बल्कि खो गए उनसे, वदालिकुम इफ्कु हूँ, और ये उनका झूठ था। वमा कानू यफ्तरून, और जो वो इफ्तरा करते थे, जो वो घड़ा करते थे, ये वो झूठ उनका उनसे गुम हो गया, खो गया। ये इफ्क था, ये इनका झूठ था, कोई ऐसी हस्तियां नहीं। वह इस सरफ ना इलाही का नफरन, अल्लाह ताला ने फिर आप देखें, अब शिफ्ट हुई ये बात, एक वो लोग कौमे आद और इस तरविश पे चलने वाली दूसरी कौमें जिनको अल्लाह ने हलाक कर दिया, उनको अल्लाह ताला ने बहुत जहन दिया था, बहुत जहन था ही, तो फिर ये सब बड़े कारनामे कर रहे थे ना, तरक्कियां थी, तो बहुत जहन दिया था, बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा वो समझदार अकलमंद और अपने आप को कहते भी थे, लेकिन उनका हाल देखो, ये एक अल्लाह कोई पहचान ना सके। और उनके मुकाबले में वो जो जिन है, जिन इंसान के बराबर नहीं है अकल में समझ में, लेकिन वो जब अल्लाह की आयात को सुनते हैं, इनका क्या रवैया था? इस कानू या जहादू नबी आयात इल्ला, जब ये कान आंखें दिल होते हुए भी इनकार करते अल्लाह की आयात का, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जिन थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अल्लाह की आयात को सुना, बावजूद इसके कि उनके पास इतनी समझ नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, वह इस सरफ ना इले का नफर मिनल जिन्नी, जब फेर लाए हम आपकी तरफ एक ग्रोह को जिन्नों में से, यस्तमियून अल कुरान, उन्होंने गौर से सुना कुरान को। सुभान अल्लाह, हमारे लिए कितना बड़ा ये सबक है, जिन्नों ने भी कुरान को गौर से सुना। हम क्या करते हैं, जब कुरान चला देते हैं और उसके बाद अपनी बातें कर रहे हैं, सारा सारा दिन घर में कुरान चल रहा है जी, बरकत के लिए चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बरकत के लिए जरूर सुनाए, लेकिन सुने, लेकिन कभी उसके ऊपर तवज्जो भी कर लेना, कभी गौर भी कर ले। तो उन्होंने कुरआने करीम को सुना। ये कब का वाक्य आता है? ये वाक्य है उस वक्त का जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होके ताइफ से निकले हैं, जब ताइफ वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और ताइफ वालों ने दावत को रिजेक्ट कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं, और आप कितनी उम्मीद लेकर गए थे उन लोगों के पास कि ये मान जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं माने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआए मुस्तदाफीन भी है ना, जब आपको लहूलहान कर दिया, आपका दिल भी टूटा हुआ है और जिस्म भी जख्मी है, अल्लाह ताला ने फिर आपको ये बताया कि आप जब यहाँ पे कुरान पढ़ रहे थे, आप नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नखला की वादी में नमाज अदा कर रहे हैं, और जिन्नात का एक ग्रोह गुजर रहा है वहां से, उन्होंने जब कुरान को सुना तो वो रुक गए। और देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया, इस सरफ ना ना हमने भेजा, हम फेर के लाए। ये अल्लाह ही है, किसी को फेर के ले आए, कोई किसी तरफ को जा रहा हो और फेर के इधर कुरान की तरफ अल्लाह ले आए। और वाकई हम अब सब देखें, हम में से कोई किसी जगह गया, किसी पार्टी पे गया, अल्लाह हमें वहां ले गया, वहां पे हमने ये बात सुन ली कि भाई इस तरह कुरान का कोर्स है, अल्लाह ताला ने हमें इसके साथ जोड़ दिया। कोई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, कोई जहाज में जा रहा था, कोई किसी दुकान पे गया, कोई किसी से फोन पे बात कर रहा था, किसी के पास आ, आ, ये सोशल मीडिया पे था, किसी के पास ऐसे ब्राउज करते करते सामने कुरान आ गया और उसकी कोई बात उसके दिल को लग गई, किसी के पास कोई व्हाट्सएप पे क्लिप आ गया और उसने वो सुना, अल्लाह फेर कर लाता है ना। गए किस तरफ वो, पता नहीं कि जिन किस काम के लिए जा रहे थे, किधर जा रहे थे, अल्लाह ताला उनको फेर के फरमाया, सरफ ना, कुरान का कोई लफ्ज बेकार नहीं है, कोई लफ्ज फालतू नहीं है, ऐसे ही नहीं है, अल्लाह फेर के लाया। तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत का पैगाम देना, अल्लाह ताला ने जिसको चुन लेता है हिदायत के पैगाम के लिए, देखो कैसे अल्लाह उसकी रहनुमाई कर देता। तो सुना उन्होंने भी था, आद ने भी सुना, इन्होंने भी, जब इन्होंने सुना तो गौर से सुना, ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिए। हमारे पास देखें आप, हर जो हमारा कोई इवेंट होता है उसके ऊपर सबसे पहले एक रसम बना ली हुई है, रसम बना, रसम ही है और क्या, कि आज जी कोई तिलावत करेगा। अब तिलावत क्या हो रही है, मजाल है कि जितने लोग बैठे हैं किसी को समझ भी एक लफ्ज भी आए कि क्या इसने पढ़ा है बंदे ने, या किसी के दिल पे भी कोई असर हो, या कोई गौर से भी सुन रहा हो। गौर से बंदा कब सुनता है, जब वाकई समझना हो। गौर से तब सुनता है जब दिल में लेनी हो बहुत। गौर से सब तब सुनता है जब इंसान अहमियत देता है उस कलाम को, तब गौर से सुनता है। और सुनी अनसुनी किसको करते हैं, जब ना मानना है ना समझना है ना कोई वैल्यू है उस बंदे की जिसके जिस जो बात कर रहा है, तब हम इधर उधर देखते रहते हैं, हमें क्या बस बोलता रहे, बस कब बंद करेगा। यही हाल लोगों का होता है, तो जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है इधर उधर देखते हैं कि बस कब खत्म हुआ, ये बड़ी लंबी तिलावत हो गई। अगर नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाए वो लंबी तिलावत करें, मजाले कुछ समझ आ रही हो, मजाले गौर हो उसके ऊपर, दिमाग भटक रहा है कहीं और ही, कोई और सोचे हैं कब, अब इमाम साहब ने आज तो बहुत ही लंबा कर दिया, कब खत्म करें तो हम रुकू में जाएं, गौर से तब भी नहीं सुनते मस्जिद जाके भी, कहीं पे भी गौर से सुनना हमारे पास नहीं है, घर में लगा लें तब भी नहीं गौर से सुनते। तो वो कहने लगे, वो जिन जो थे वो गौर से सुनने लगे। अब ये जिन, आपको पता है जैसे हमें पता चलता है कि ये जिन्नात जो थे जब इनको आसमानों पे आने से रोक दिया गया था, तो उस वक्त फिर ये तलाश में निकले थे कि कब हमें, क्या ऐसा दुनिया के अंदर हो रहा है, पता नहीं इनके साथ अल्लाह ताला ने कोई शर का इरादा किया या खैर का। सूरह जिन में ये सारी बातें आती हैं कि उन्होंने कुरान को सुना, फिर उन्होंने कहा कि हम तो कभी शिर्क नहीं अब करेंगे, इसका मतलब कोई मुशरिक ही होंगे, हम तो कभी शिर्क नहीं करेंगे अल्लाह ताला के साथ। हमें नहीं पता था कि इंसानों और जिन अल्लाह के ऊपर झूठी बात भी कर सकते हैं, कि हमें इस तरह बता दिया हुआ कि अल्लाह का कोई शरीक है, हमें नहीं पता था कि इस तरह से भी हो सकता है। हम भी हैरान थे कि जब हम ऊपर जाते थे तो हम जाके पहले बातें सुना करते थे, अब कोई बात ही हमें सुनने से रोक दिया गया, तो हम तो जाके वहां पे बैठा करते थे। और हम में से नेक भी हैं, हम में से दूसरे भी हैं, हम में से मुस्लिम भी हैं और हम में दूसरे भी हैं जो हद से भी बड़े में, और हमें तो पता चल गया है कि अब हमने तो जूं ही सुना हम ईमान ले आए अपने रब के ऊपर। तो वो उन्होंने सुना कलाम, फलम्मा हादरू, फिर जब वो हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कालू अंसितू, तो वो कहने लगे चुप हो जाओ, उन्होंने एक दूसरे को कहा चुप कर जाओ खामोश हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना वो। तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप रंजीदा थे ना, देखिए पहले मक्का से निकले तो किस वक्त निकले, अबू तालिब और खदीजा रजी अल्लाह ताला की जब वफात हो गई है तो उस वक्त निकले, दिल इतना उस वक्त ही गमगीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार्ट ब्रोकन है, जब ताइफ गए तो वहां पे भी आगे से नेगेटिव रिएक्शन, लहू लहान करके उन्होंने भेज दिया। तो अब वादी नखला में पहुंचे, अल्लाह ताला ने जिन्नों को इस तरफ भेज दिया, सुबहान अल्लाह, के ये नहीं मानते तो एक और मखलूक है अल्लाह के पास, कौन सी कमी है, एक और मखलूक है जो आपके ऊपर ईमान ले आती, और आप तिलावत कर रहे हैं और वो गुरोहे जिन्नात को अल्लाह ताला ने इस तरफ को फेर दिया, तो वो जाते जाते अल्लाह ताला का ही फेरना था, खुद से नहीं आ गए, जाते जाते अल्लाह ताला ने उनका रुख इधर को कर दिया। और कहा जाता है कि शाम की तरफ के ये जिन थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और कह रहे हैं खामोश हो जा, हमें तो आज तक अकल नहीं आई कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो चुप करना चाहिए। फैज़ा कुरियल कुरानु फस्तमीउ लहू अनसितु, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरह आराफ के एंड में ना, कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। उन्होंने तो नहीं पढ़ा था कुरान, वो उस वक्त ही कह रहे हैं, हमें तो हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो गौर से सुना करो और खामोश हो जाया करो। हम फोन उठा लेते हैं बातें कर रहे हैं पीछे कुरान चलना। तो देखें नफर को अल्लाह, नफर किसको कहते हैं, नफीर से 3 से 10 तक की जमात को, देनी इतने तकरीबन शायद 7 के करीब थे कहा जाता है ये जिन जा रहे हैं। अब इन्होंने कुरान सुना, उन्होंने खामोशी से सुना, फलम्मा कुदिया, जब आपने पढ़ लिया, पढ़ चुके आप, खत्म कर लिया आपने, वल्लो इला कौम ही मुंतजी, तो वो चल पड़े अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बन के, सुबहान अल्लाह अल्लाह। अच्छा देखिए, अब उन्होंने कुरान सुना तो हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कह देते हैं, चाहे समझ कुछ भी ना आया हो लेकिन बस आवाज खूबसूरत लगी, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, चले ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? कपड़े झाड़ के उठे चल पड़े, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, बस इतना। उन्होंने ये नहीं किया हमारी तरह के सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत, चलो जी अब अपने काम पे चलते हैं, हो गया ना अब सुन लिया। नहीं, वो क्या हो गए, खुद भी वो ईमान लेकर आए और अपनी कौम के पास वापस मुंजिर बन के गए, मुंजिर बन के, कि अपनी कौम को पैगाम दें। और फिर आगे उनकी कौम को जो उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने उनकी बात को कुरान की जीनत बना दिया, कयामत तक के लिए लोग पढ़ेंगे उन्होंने कैसे तबलीग की। अल्लाह ताला को कितनी उनकी तबलीग पसंद आई होगी, कितनी उनकी बातें पसंद आई होंगी। जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती। अगर आप भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो जाए ना, तो अल्लाह ताला को आपकी बातें भी अच्छी लगेंगी, किस तरह आप लोगों को बुला रहे हैं, किस तरह आप लोगों को कह रहे हैं इधर को आओ अल्लाह की तरफ। देखो अल्लाह ताला ने उनकी बातों को यहाँ पे बयान फरमा दी। तो वो अब अपने घर जाकर सो नहीं गए, हमारे पास बहुत काम है जी। नहीं, और एक बात सुनी थी यानी, और ये भी नहीं उन्होंने किया, चलो आधी बात सुन के ही एक्साइटमेंट के अंदर भाग पड़ते, तो पूरी बात भी नहीं हमने सुनी होती। जब हमें कोई बात ज्यादा अच्छी लग जाए तो एक्साइटमेंट में ही आगे लेके चल पड़ते, फॉरवर्ड फॉरन करने शुरू होते हैं। अभी पूरा क्लिप सुना खुद भी नहीं है, फॉरवर्ड कर दो, ये काम होता है। पर पूरा तो सुन लो, बात को पूरी समझ तो लो। उन्होंने बात को गौर से सुना, इसका मतलब समझा है, खामोशी से सुना, क्योंकि जब इंसान खुद बोल रहा होता ना तो समझ नहीं सकता। अब हम, ये कुरान की क्लास है, उसमें आप कितना गौर से बैठते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, मैं तो अपनी स्टोरीज तो नहीं सुना रही ना यहाँ पे, आप कितना गौर से सुनते हैं, खामोश होकर सुनते हैं। ये भी बातें करना है कि जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं, इसको टेक्स्ट कर दूं, उसको टेक्स्ट कर दूं, अच्छा टेक्स्ट चेक तो कर लूं, आपका ध्यान तो कहीं और है, घर में बातें कर रहे हैं, चलो कोई मजबूरी होती है, कोई बच्चे हैं जिसके पास या कुछ है उनको को मजबूरी है, लेकिन जिनके पास कोई ऐसे काम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, क्यों नहीं ऐसी एक जगह तलाश करते जो खामोश, जहां पे खामोशी हो, जहां पे खामोशी से हम काम कर सके पूरे यकसू होके और गौर से सुन सके, ताकि बातें दिल में जाएं। यहाँ ऐसे ही सुनते हैं कि भाई एक कान से सुन रहे हैं उनकी तरह, वो जिनको कान है और फिर भी नहीं है, जिनकी आंखें हैं फिर भी नहीं है, जिनके दिल है उनसे भी समझते नहीं, कोई काम नहीं आए, वैसे सुनते हैं या जी इन जिन्हों की तरह सुनते हैं, सोचे हम। अभी ये मखलूक हमसे नीचे है, हम अशरफ हैं, लेकिन जब इंसान जो है अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता ना, अल्लाह को नहीं पहचानता और उसकी आयात को नहीं समझता, तो वो इन इनसे भी नीचे हो जाता है। मैंने आपको बताया चौपायों से भी नीचे, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कान आके नहीं इस्तेमाल करने तो कुछ नहीं हो तुम अल्लाह की नजर में। तो ये लोग पूरी बात इन्होंने सुनी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत भी तो माशाल्लाह कितनी लंबी होती थी, वो लंबी तिलावत फरमाते थे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे, तरतील के साथ पढ़ते थे, ठहर ठहर के पढ़ते थे, तो वो पूरी सुनते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो और भी काम करने, हम जिस तरफ जा रहे थे उधर जाएं, पूरा सुना फिर पलटे हैं और जाके तबलीग कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो कितने मुतासिर हुए होंगे, और फिर वो कितना उन्होंने इसको दिल पे लिया होगा। अरे जो बात दिल पे लगती है फिर इंसान उसकी दावत दूसरे को देता है ना, आप में से जो लोग दिल पे लेते हैं फिर वो तो तड़पते हैं, कहते हैं हम आगे जाके किसको बताएं, हमसे ऐसे बैठा नहीं जाता। लोग मुझे कहते हैं हमें इस तरह, जब से हम कुरान से जुड़े हैं हमसे, हमें चैन नहीं आता, हम पकड़ पकड़ के लोगों को लेकर आते हैं। वाकई इंसान की जब दिल के ऊपर ये लगता है ना, तो फिर वो ये नहीं कहता कि आय हाय मैं ही अब ये काम करती रहूं, मैंने ही कोई जिम्मा लिया हुआ, कोई ये मेरी जॉब है, फिर ये नहीं कहता वो। तो देखें कि वो लोग फिर गए और आगे जाके खबरदार करने वाले बन गए। अल्लाह हु अकबर। पालू वो अपनी कौम को जाके कहते हैं या कौम माना ए हमारी कौम। अब देखें वो भी ये नहीं कह रहे तुम लोग कैसे हो और तुम लोग क्यों ऐसे, तुमने कुफर के ऊपर नहीं, तुम फिर भी हमारी कौम ही हो। मैंने आपको क्या बताया, पहले आप उनके साथ खैर ख्वाही से बात करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे ना, ओ तुम अल्लाह के दुश्मनों, ओ तुम फलानो, ओ तुम ये नालायक हो, ओ बदबख्त हो, इस तरह की बात करेंगे तो फिर कैसे कोई सुनेगा। हम अपने बच्चों को तो ऐसे ही तबलीग करते हैं, क्या ख्याल है, नालायक हो और ऐसे क्या के। तो इस तरह से नहीं होता। या कौमन है हमारी कौम, आप भी कहें है मेरे बच्चों, है प्यारे बेटे, इन्ना समेना किताबन, बेशक हमने सुना है एक किताब को, उन्जिला मिन बादी मूसा, मूसा अलैहि सलाम के बाद उतरी है, यानी तौरात को भी इसका मतलब वो जानते थे। हो सकता है कि कोई यहूदी जिन हो, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैही, उसकी तस्दीक करती है जो उससे आगे है, यहदी इलल हक, हिदायत देती है हक की तरफ, इला व इला तरीक मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखो जी, एक दफा सुन के ही उनका ये था कि वो जाके कैसे इस कुरान के बारे में बताते हैं कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो कैसा है। एक तो ये उनको पता है, इसका मतलब अरबी भी समझते थे, समझदार भी जिन थे, उन्होंने सारी बात भी समझी, इसीलिए तो कह रहे हैं ना हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो मूसा अलैहि सलाम के बाद आया, इसका मतलब तौरात के बाद नाजिल हुआ, ये उनको पता है तौरात के बाद ये नाजिल हुआ है कुरान, तौरात को की समझ रखते थे। दूसरी बात ये कि ऐसा वो कलाम है जो तस्दीक करता है, पिछले कलाम की तस्दीक करता है, ये भी समझ आ गई। इसका मतलब है कि उनको ये कुरान में से बात समझ आई है कि ये पिछले कलाम को रिजेक्ट नहीं करता, उसको भी मानता है, और यहदील हक, हक की पैर तरफ हिदायत देता है, सच्चाई की तरफ, हक जो रियलिटी है उसकी तरफ हिदायत देने वाला है और सीधे रास्ते की तरफ चलाने वाला है। कायल हुए तो ये कह रहे थे ना, और इनकी तबलीग से और जिन भी मुसलमान हो गए। जी हाँ, और जिन भी मुसलमान हो गए, बाज जगह पे आता है कि जिन्नात के ग्रोह के 70 जिन ने, जिन्होंने कबूल कर लिया इनकी बात को, फिर वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात करने के लिए आए। तो ये तो पहले बातें अल्लाह ताला ने बता दी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि मुसलमान हुए ये, फिर जब उन्होंने तबलीग की तो उनसे जो आगे मुसलमान हुए वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे वक्तन फवक्तन आपसे सीखने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के अलावा जिन्नों के लिए भी ये रसूल बना के भेजे गए थे। जिन्नों में कोई रसूल नहीं आया, ठीक है, लेकिन इंसानों के रसूलों से ही जिन्नों ने सीखा, इसीलिए वो मूसा अलैहि सलाम की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब मूसा अलैहि सलाम के ऊपर भी जिन्नात ईमान लाए होंगे, जिन्नों में यहूदी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, तो उनको पता चल गया कि ये अब आखिरी रसूल आए हैं और ये उनकी दावत है, ये उनका पैगाम है, वो एक ऐसा कलाम लेकर आए हैं, और ये लोग फिर यानी उसको समझ गए इस बात को, और उन्होंने कहा या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ए हमारी कौम कबूल कर लो अल्लाह के दाई की बात को, यानी कि उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमने बता दिया अब हम ये जाने और इनका काम जाने, हमें क्या आप जो मर्जी करते रहे, नहीं उनको कायल कर रहे हैं, वो कबूल कर लो, वो मान लो, वह आमिनू भी, और ईमान लो ले आओ इसके ऊपर, और इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने फायदे को ज्यादा देखता है ना कि इसमें मेरे मुझे क्या मिलेगा, इससे ईमान लाने से मुझे क्या फायदा होगा, तो वो भी उनको इंसेंटिव बता रहे हैं कि जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर या फिर लकुम मिन दुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अदाबिल अलीम, जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों से भी दरगुजर कर लेगा, बख्श देगा उनको, और तुम्हें दर्दनाक अजाब से भी बचा लेगा। अब देख लें क्या चीज थी जिसने इन लोगों को चेंज किया, इन जिन्नों को किस चीज ने चेंज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई पर्सनल बातें नहीं की हैं, कोई उनको दर्स नहीं दिया है, क्या ख्याल है क्या चीज थी जिसने इनके दिल बदल दिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए। बाकायदा आके उनको बता रहे हैं कि वो कलाम ऐसा है, और फिर उसकी तबलीग भी करने शुरू हो गए, और उनको ये भी पता चल गया कि अल्लाह ताला बख्श देता है जब कोई ईमान लेकर आता है, अल्लाह ताला उसको अजाब से भी बचा लेगा, वरना क्या है, वमन ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्दी। उनको पता है क्या बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं कबूल करोगे, जवाब नहीं दोगे अल्लाह के दाई को, तो देखना तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, उसे बच नहीं सकते। वले सलहु मिन दूनी औलिया, और नहीं उसके लिए उसके सिवा कोई हामी और मददगार। जो अल्लाह की बात ना मान, जो दाई अल्लाह की बात नहीं मानेगा, फिर उसका कोई मददगार नहीं होगा। हमें तो देखे इतनी बातें समझ नहीं आती, कितना कितना कुरान भी पढ़ लेते हैं, हमें ये बात नहीं समझ आती कि अल्लाह, अगर अल्लाह के रसूल की बात को नहीं समझा, नहीं माना, तो देखो फिर कोई हमें बचा नहीं सकेगा। हमने तो फिर भी बीबी पाक दामन का दामन थामा हुआ है, वो फलानी बीबी का दामन, वो फलाने बंदे का दामन, वही हमें बचा लेगा। वो कह रहे हैं एक दफा कुरान सुन के फिर तुम्हारा कोई औलिया नहीं होगा, फिर अल्लाह के पास उसके सिवा फिर कोई मददगार नहीं होगा, यानी तुम बच नहीं सकते। फिर उलाएगा फी दलाले मुबीन, फिर तो खुली गुमराही में है जो नहीं माने। जो ना माने फिर उसका तो बस समझ लो उसकी हलाकत है, फिर वो अल्लाह को हरा नहीं सकेगा कहीं, वो कहीं भाग नहीं सकेगा। आप देख लें कौम आद के साथ कंपैरिजन करके, वो सोचते थे कि हमें क्या, हमें तो ये बुत बचा लेंगे, हमें तो ये हमारे इलाह है जो बचा लेंगे, हम तो इतने ताकतवर हैं, हमें कौन आजिज करने वाला, हमारे जैसा वो को तो कोई सामने है। पर ये क्या कह रहे हैं, जब ईमान आता है ना तो इंसान ऐसे मोम हो जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं, कि वो कहते हैं कि देखो हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं। यानी ये नहीं कि हमें बड़े जिन है, जिन्हों के अंदर ताकत काफी होती है ना, इंसानों से तो ज्यादा होती है। तो आप देखें वो ये नहीं कहते हम इतने ताकतवर हैं, हम तो कहीं भाग जाएंगे, हम तो आसमानों पे चले जाते हैं ना, कोई आजिज करने वाला नहीं उसको, कोई यानी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पनाह नहीं पा सकता, कोई छुप नहीं सकता, और देखो कोई हामी और मददगार नहीं। फिर क्या करोगे, फिर तो हलाकत है, फिर तो खुली गुमराही में हो। देख लें हम तो पढ़ पढ़ के भी सोचते रहते हैं ना, तबलीग कैसे करनी है, हमें क्या पता कैसे क्या ना, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे दावा का काम करूं, मैं लोगों को कैसे बुलाऊं। कई लोग कहते हैं भाई हम कैसे बूथ पे खड़े हो, हमें तो आता ही नहीं। कुछ नहीं आता क्या इतना पढ़ के भी, वो उन्होंने एक दफा पढ़ा है, एक दफा सुना है, पढ़ा तो नहीं, सुना है एक दफा, और देखो सुभान अल्लाह क्या सिंपल सिंपल बातें हैं ना। पहुंचा देना हमारा काम होता है, किसी को कन्विंस करके लाना नहीं। कामयाबी हमारी ये नहीं है कि कितने मेरे हाथ में मुसलमान हुए, कामयाबी मेरी ये है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अल्लाह के पैगाम को बस पहुंचा दिया, ये मेरी कामयाबी है, मैंने कितनों तक पहुंचा दी है बस। तो हम इसके ऊपर थे, अब क्या फायदा, वो तो कोई मुसलमान होता ही नहीं, कोई तो सुनता ही नहीं, तो कोई आता ही नहीं इस तरफ, मुझे तो आती ही नहीं बात करनी। आप इसलिए समझते हैं कि आप बात करनी आती का मतलब यह है कि जिस वक्त आप दूसरे को कायल कर लें, कन्विंस कर लें, और वो मुसलमान हो जाए या वो कुरान की तरफ आ जाए, तो फिर समझ लें कि आपको बात करनी आती। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जिस जुबान में भी जिस तरीके से भी आती हो, बस उसमें खैर ख्वाही होनी चाहिए, वो दिल से निकलनी चाहिए बात, आप खुद कायल होने चाहिए बस। तो फिर आप जो बात भी करेंगे वो दूसरे के दिल को लगेगी, ऊपर ऊपर की बातें ना किया करें, दिल से बात करेंगे और खैर ख्वाही, ये दो चीजें अगर आपके अंदर होंगी, बात खुद ब खुद मुंह से अदा होगी, बात करनी आ जाएगी। अब इन्होंने कुरान सुना, इनकी जिंदगी बदल गई। मेरा आपसे सवाल है कि फिर और हम क्या चाहते हैं, किस चीज से हम समझते हैं कि जिंदगी बदले, किस चीज से हम समझते हैं कि दिल बदले? कुरान, उनके जिन्नों को ईमान लाने के लिए कौन सी चीज मददगार साबित हुई, किस चीज ने उनको ऐसा बना दिया कि वो मुनजिर बन के उठे? कुरान ने। फिर अगर हम कुरान छोड़ के ही और बातें करते रहे, ये भी सीख लो, वो भी कर लो, ग्रामर भी पढ़ लो, और पता नहीं और कौन कौन सी चीजें पढ़ लो, कौन से ये उलूम ले लो, वो उलूम ले लो, लेकिन कुरान की तरफ नहीं आना, हमने फिक भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तरफ तो आओ, कुरान तो पढ़ लो। नहीं, वो तो हमने पढ़ के देखा, ये नहीं होना चाहिए। कुरान ही है जो जिंदगियां बदलता है, दिलों को बदलता है। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा दिल सख्त हो रहा है, कुरान की तरफ आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यही इलाज बताया, मौत की याद और कुरान, ये दिलों के जंग को दूर करता है। अगर आपको लगता है मैं अल्लाह से दूर हो रही हूँ, कुरान की तरफ आई है। अगर आपको लगता है कोई और है तो इसकी जिंदगी कैसे बदलेगी? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना ये कि देखें हम क्या करें, वो नमाज नहीं पढ़ता, फलाना ये नहीं करता। कुरान की तरफ बुलाएं, मैं तो ये एक ही नुस्खा बताती हूँ, जिस कुरान ने जिन्नों को बदल दिया, हालांकि उनकी अकल हमसे छोटी होती है, उनको बदल दिया। तो हम तो अच्छी भली अकल रखते हैं, क्या कुरान हमें नहीं बदल सकता? यही कुरान का मोजा है, ये दिलों पे असर करता है। तो लेकिन हाँ, उसके लिए इंसान अपना दिल खोले, आंखें खोले, कान खोले, एक कान से डाल के दूसरे से निकाल ना दे, जैसे कौमे आद ने अल्लाह की आयतों के साथ किया, जैसे कुरैश मक्का करते थे। कुरान को सुन रहे थे वो, लेकिन फिर क्या उनका रवैया था? और जिनकी जिंदगियां बदली, उनकी भी जिंदगियां कुरान के जरिए बदली, उन्होंने अपने दिलों को खोल दिया, सब तरह के बायसेस एक तरफ रख के, तासुबात एक तरफ रख के, खुले दिल के साथ इसको सुना तो ये जरूर असर करता है। और आज भी आपने किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो कुरान के जरिए बुलाइए, इसके साथ जोड़ दें, वो अल्लाह से जुड़ जाएगा, इसकी तरफ बुलाएं वो अल्लाह की तरफ आ जाएगा। तो दावत के काम के अंदर भी कुरान को रखें। और फिर देखें, जब इंसान को भी समझ आ जाए और उसके दिल में बात उतर जाए, तो फिर दूसरों को बताना मुश्किल नहीं रहता, जैसे इन जिन्नों के लिए था। इन जिन्नों की किसने ड्यूटी लगाई थी कि आपने इतने आवर्स का दावा करना है, या इन्होंने कितने उलूम हासिल कर लिए थे? इतनी सिंपल सी बात भी आपको समझ आ जाए ना, एज इट इज पहुंचा दे, लेकिन एज इट इज अपनी तरफ से मिला मिला के ना पहुंचाएं, जिसको भी बैठे, बच्चों के साथ बैठे, घर में बैठे, एज इट इज बता दे जो आपने बात सुनी है, आज तो मैंने कुरान में ये पढ़ा। सिर्फ इसका तर्जुमा ही पढ़ के भी बता देंगे तो कुछ बात तो समझ आ जाती है, बहुत नहीं भी डिटेल आती तो। सिर्फ अगर आप ट्रांसलेशन भी पढ़ लें तो कुरान ऐसा मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। हाँ, जितनी डेप्थ में जाएंगे लज्जत उतनी ही आएगी, मज़ा उतना ही आएगा, इसकी खूबसूरती का उतना ही ज्यादा पता चलेगा। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं करे और सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ ले, तब भी ये असर जरूर करता है, ये बात समझ जरूर आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या चीजें उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आते रहे जिन्नात, आपसे सीखते रहे, हमें अहादीस से पता चलता है कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और इन्होंने, जैसे अलकमा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा कि क्या आप में से कोई शख्स उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जब आपकी जिन्नात से मुलाकात हुई, और बहुत दफा मक्का में ही हुई है, बहुत दफा मक्का में हुई। तो उन्होंने कहा, हम में से कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन एक रात हमने आपको गुम पाया, और हमको यही ख्याल आता था कि किसी दुश्मन ने आपको धोखा दे दिया है, या आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया है। तो हम इंतहाई परेशानी में हमने वो रात गुजारी, या उन्होंने तलाश किया, आपसे सर उनको नहीं मिले, तो उनको लगा कि बस अब कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया, तो बहुत वो सारी रात परेशान रहे। कहते हैं जब सुबह हुई तो हमने आपको गारे हिरा की तरफ से आते हुए देखा, हमने कहा या रसूल अल्लाह, और हमने आपसे अपनी परेशानी बयान की कि हम इस तरह सारी रात परेशान हैं। तो आपने फरमाया, असल में मेरे पास एक जिन दावत देने आया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट करने के लिए ना, तो मैं उनके साथ गया और मैंने उनके सामने कुरान पढ़ा। वो एक आया जिसने इनवाइट किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गया, और बाकी जिन्हों के सामने आपने कुरान पढ़ा। फिर आप हमको लेकर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको लेकर गए, और आपने हमें वो निशान दिखाए जिन्नों के, और उनकी आग के निशान भी दिखाए, जहां पर उन्होंने आग जलाई हुई थी, जहां पे भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की थी। तो एक और रिवायत में आता है कि शाबी ने बयान किया कि उन्होंने आपसे नाश्ता तलब किया, तो आमिर ने कहा ये एक जजीरे के जिन थे। आपने फरमाया, हर वो हड्डी जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, जब वो तुम्हारे हाथों में आएगी तो गोश्त से भर जाएगी, और इसी तरह गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा बनेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना किया कि आप इसके बाद इन दो चीजों से, गोबर और हड्डी के साथ, कभी इस्तंजा ना करना, ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है। यानी और उनके जानवरों की, यानी हमें पता चलता है कि उनके भी जानवर हैं। अब उनके जानवर कैसे हैं, वो उनके जैसे ही होंगे, जैसे जो जैसे वो हैं उसी तरह की उनकी जानवरों की भी कोई और तरह की मखलूक होगी उनकी जानवरों, क्योंकि हमारे जानवर उनके काम नहीं आ सकते। आप देखें कि हमारे जो जानवर हैं इनका गोबर उनके जानवरों का चारा है, और जो हम खा के हड्डी है जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया, वो उनके हाथ में जब आती है तो गोश्त से भर जाती है, उनके लिए बहुत ताकत का जरिया बनती है। तो ये मुस्लिम की रिवायत है। तो हमें पता चला कि जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा भी था, और आपने उनके सामने फिर अगेन कुरान पढ़ा। और हमें ये भी पता चलता है कि जिन्नात जो थे तहामा में पहुंचे, जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के पास थे। उस वक्त आप औकाज के बाजार का इरादा करने वाले थे, और आप अपने सहाबा को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। जब जिन्नात ने कुरान मजीद सुना तो उन्होंने कहा कि गौर से सुनो, जो ये वाली आयात आई, उन्होंने कहा कि गौर से सुनो वो चीज जो ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। और सूरह जिन में भी है ना, इन्ना समयना कुरआनन अजबा, उन्होंने कहा कि एक अजीब कलाम हमने सुना है, एक ताज्जुब में डाल देने वाला कुरान। यहदी इला रुश्दी फआमन्ना भी, वो हिदायत, वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो हम ईमान ले आए हैं, वलन नुशरिक भी रब्बिना अहदा, हम अल्लाह के साथ अब किसी को नहीं शरीक करेंगे। सोचे सूरह जिन में ये आता है, एक दफा कुरान सुनने से उन्होंने ये कह दिया। और इंसान है वो शिर्क से बाज ही नहीं आते, बार बार कुरान सुन के भी। अल्लाह हु अकबर। तो फिर इसका मतलब आगे उनके अंदर फिर आगे जिन्नात और इस्लाम लेते आए। और ये भी हमें पता चलता है, उलमा लिखते हैं कि देखें यहाँ पर उन्होंने जो खामोश रहने का कहा, तो इससे पता चलता है कि तालीम जब हो रही हो, इल्म हासिल करते वक्त खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, और उस्ताद की बात को गौर से सुनना चाहिए, एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। और खास और खास जब कुरान पाक की तालीम हो रही है या कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, तब तो जरूरी होना चाहिए। एक और रिवायत हमें मिलती है जिसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से ही है कि मुझे ये बताया गया कि जिन्नात से मुलाकात की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। ये हो सकता है कोई और इंसिडेंट हो, मल्टीपल टाइम्स जिन आते रहे ना, तो कहते हाँ मैं था। तो जो पूछने वाले ने कहा कि फिर क्या हुआ था, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत खींचा, एक लाइन खींची और फरमाया इस जगह से ना जाना, यानी इसे आगे ना जाना। और उन्होंने बताया कि ऐसे मैंने चीजें देखी खच्चरों की तरह, जानवरों मतलब जैसे गधे होते हैं इस तरह से देखी। एक और जगह पे आता है कि ये जिन आपके पास नैनवा बस्ती से आए थे, तो आपने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं जिन्नों को कुरान पढ़कर सुनाऊं, तो तुम में से कौन मेरे पीछे आएगा। तो लोगों ने सर झुका लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कौन मेरे पीछे आएगा, तो लोगों ने फिर सर झुका लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कौन मेरे पीछे आएगा, तो फिर लोगों ने सर झुका लिए। फिर एक आदमी ने कहा ए अल्लाह के रसूल बेशक आप पहल करने वाले, और अब्दुल्ला बिन मसूद उनके पीछे गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी घाटी में दाखिल हुए, जैसे शेबे अलहजून की है घाटी उस तरह। तो आपने अब्दुल्ला बिन मसूद की गिर्द एक दायरा खींच दिया, यानी एक सर्कल बना दिया जमीन के ऊपर ना, लाइन खींच दी, तो कि आप इसमें ही खड़े रहेंगे। आपने उनको हुक्म दिया आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि वो जिन्नात मेरे ऊपर उतरने लगे और मुझे गधों की तरह लश्कर की सूरत में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे गधे होते ना इस तरह। तो सहाबा में से कोई भी नहीं आया, सिर्फ अब्दुल्ला बिन मसूद आए थे, उनको भी आपसे ने दूर खड़ा कर दिया और इस तरह दायरा खींच दिया, और वो वहां से ही देख रहे थे। तो मैंने मिली जुली आवाजों का बहुत सारा शोर सुना, तो मुझे अल्लाह के नबी के बारे में खौफ लाहक हुआ कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब इंसान परेशान हो जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना आवाजें आ रही हैं, इतना शोर मचा हुआ है। फिर आपने कुरान की तिलावत की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी ये आवाजें ये शोर किस चीज का था जो मैंने सुना, तो आपने फरमाया वो एक आदमी के सिलसिले में मेरे पास इकट्ठे हुए थे जो इनमें कत्ल हो गया था, और इनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया गया, जो भी फैसला करना था तो आपसे सलम ने किया, वहां पे उसका शायद शोर हुआ होगा। तो फिर जब अब्दुल्ला बिन मसूद बाद में, बाद की बात है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद के कूफा आए, तो उन्होंने हबशियों के उधेड़ उम्र के कुछ बूढ़ों को देखा, तो जिन जो का उन्होंने ने खौफजदा किया, तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये अजमी लोगों की एक जमात है। तो फरमाया मुझे जिन्नों में वो लोग दिखाए गए थे जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत की थी, तो शक्लो सूरत और रंग में वो इनके मुशाबे थे, इन हज्जियों जैसे थे, वो कोई एक जमात जिन्नात की थी जो इन्होंने देखी थी जो इनके जैसी थी। तो आप देखें फिर यानी एक दाई आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया और जाके आपने उनको कुरान सुनाया और इस तरह से उनको तबलीग की और इस तरह उनके दरमियान फैसले भी किए, क्योंकि आप देखें कि पूरी मखलूकात के अंदर से सिर्फ इंसान और जिन दो ऐसी मखलूक हैं जो कि कयामत के दिन जिनका हिसाब किताब होगा और जिनके लिए जन्नत और जहन्नम है, ठीक है, बाकी कोई और मखलूक नहीं है जिसके लिए जन्नत और जहन्नम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक दफ़ा फरमाया था सहाबा के पास, आपने सूरह रहमान पढ़ी, सारी सूरत की तिलावत कर दी, सारा सहाबा खामोश रहे, तो आपने फरमाया कि मैंने जिन्नों के सामने ये सूरत पढ़ी थी तो उन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया, क्या कि फबी अला रबी कुमा तो कदीबान के जवाब में वो कहते ला भी शई मिन का रबना कतीबू फलक अलहमद, तो तुमसे बेहतर तो उन्होंने जवाब दिया, तो सहाबा को फिर हुआ, फिर उन्होंने भी इस तरह से जवाब देना शुरू कर दिया फबी अला रबी कुमा तो कदीबान का। तो मुशरिकी ने मक्का को भी बताया जा रहा है और रहती दुनिया तक लोगों को बताया जा रहा है कि देखो एक ग्रोह जिन्नों का इसी कुरान को सुन के कैसे इसको कबूल कर लेता है और कैसे वो आगे तबलीग करता है। तो तुम भी इससे सीखो, तुम भी इसे समझो कि तुम भी जब कुरान सुनो तो आगे इसको पहुंचाओ और इसको अपने तक ना सिर्फ रखो, और देखो फिर कैसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से तबलीग की, तौरात की भी बात की है और फिर इस कुरान की भी सिफात बयान की कि ये सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाता है और हक बात करता है, सच्ची बात करता है। सुभान अल्लाह। और फिर हम देखते हैं कि सारी बात उनको बता दी, अल्लाह ताला फरमाता है अब यहां तक इन जिन्नों की बात खत्म हो गई, अब आखिर की एंडिंग इस सूरा की एंड हो रहा है, अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्द, तुम ये गौर नहीं करते, तारा देखिए एक नजर होती है आंखों से देखना, एक होता है यरा जैसे अलम तारा कैफा, तुमने देखा, यरो उन्होंने देखा, प्लूरल की बात है और थर्ड पर्सन, उन्होंने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वलम याया भी खलकिहिन्ना, और उनसे वो थका नहीं, ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए कि तुम सोचते हो अल्लाह ताला कैसे दोबारा पैदा करेगा जब वो इतने बड़े आसमान और जमीन को पैदा करके थका ही नहीं है, थकावट नहीं हुई, वो कादिर है अला अन युहयी अल मौता कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दे। देखें इंसान है या कोई भी मखलूक है, वो थोड़ा काम कर लेना उसको थकावट लाहक हो जाती है, अल्लाह ताला को थकावट नहीं है कभी, उसने इतनी कायनात पैदा की और रोज पैदा हो रही हैं चीजें, देखें इस वक्त भी कोई ना कोई दुनिया में आ रहा है, कोई ना कोई चीज बन रही है, कोई ना कोई उसकी मखलूकात में से कोई ना कोई पैदा हो रहा है, लेकिन वो थकता नहीं है, नहीं उसको थकावट नहीं, आसमान इतना बड़ा बना के भी उसको थकावट नहीं, इसमें देखें कितने उसने सितारे सैयारे, वो भी कभी कोई टूट रहा है कोई दोबारा बन रहा है कोई नया बन रहा है, उससे भी वो थका नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आया मैंने आपको क्या बताया कि जब बहुत मेहनत करके कोई थक जाए तो फिर वो क्या दोबारा उठाने पे थक जाएगा, क्या वो दोबारा नहीं उठा सकता, भला इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, क्यों नहीं बल्कि वो हर चीज पर कादिर है, क्यों नहीं किस बात पे कहा गया ये कि वो कादिर है कि वो जिंदा करे मुर्दों को, क्यों नहीं कादिर, वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, तो मुर्दों को जिंदा करना कौन सी बड़ी बात। यौमा युअरदुल्लज़ीना कफरू अलन नार, जिस दिन पेश किए जाएंगे काफिर लोग आग पे, अलैसा हादा बिल हक, तो उनसे कहा जाएगा अब बताओ क्या ये सच्चाई नहीं है, तुम तो दुनिया में इसको नहीं मानते थे ना, क्या आग है वो कौन सी आग है, हम तो वहां के फरिश्तों के साथ मुकाबला कर लेंगे, ऐसी कौन सी आग है जिसके अंदर पौधे उग रहे हैं, ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते थे और आग के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते थे और तहकीर करते थे। अब बताओ, आग पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आग को, अब बताओ क्या ये हक नहीं है? क्या ये सच नहीं है? तुम तो मानते ही नहीं थे, क्या ये बरहक नहीं है? क्या ये जो तुमसे वादे किए गए थे, तुम्हें बताया गया था कि कुफर और शिर्क के बाद ये सजा है, क्या ये सच नहीं है? कालू बला व रब्बीना, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सच है, कसम है हमारे रब की। अब उनको रब भी पता चल गया, अब रब भी याद आ गया, अब उनको सारी बातें भी याद आ गई और बिल्कुल मान भी गए हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कौला फरमाएगा, फजूकु आदाब अजूकुल आदाब बीमा कुंतुम तकफुरून, तो फिर चखो इस आजाब को जिसका तुम कुफर करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, आग जहन्नुम की बहुत खौफनाक चीज है, जो नहीं दुनिया में मानते और जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, फिर उनका देखो अंजाम, कि उस दिन तो मान ही जाना है। असल मानना ये कि तुम दुनिया में मानो, उस दिन तो कहेंगे, कसमें खा खा के कहेंगे वाकई ये सच, हम कसम खा के कहते हैं बिल्कुल सच है, सब कुछ सच था, लेकिन दुनिया में अपने ख्यालात के मुताबिक जो दिल करता था वैसे अपना अकीदा बना के रखा। अल्लाह के यहां पहुंचे तो पता चला सब चीज जो सोचते थे वो तो कुछ और था, ये तो कुछ और है, सच्चाई तो कुछ और है। उस दिन कितना बड़ा घाटा होगा। फसबिर ए नबी, आप सबर कीजिए, ए नबी आप इनके साथ सबर करें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। ये जो तकलीफें आपको पहुंचा रहे हैं, ये जो इनकार कर रहे हैं, ये जो नई बात सुन रहे हैं, ये जो मुखालफत कर रहे हैं, सबर करें। कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसे कि उलुल अज़्म पैगंबरों ने सबर किया था। मैंने आपको पहले बताया कि उलुल अज़्म कौन कौन से पैगंबर हैं, बाज़ जगह चार का भी जिक्र आता है, बाज़ जगह सात का भी जिक्र आता है, लेकिन ज्यादा राज़ ये है कि पांच ही हैं, नूह अलैहि सलाम, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहि सलाम, अलैहिम सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम। तो यानी उलुल अज़्म पैगंबरों का, यानी नूह अलैहि सलाम को याद करें, वो तो 950 ईयर्स तबलीग करते रहे। इब्राहिम अलैहि सलाम को याद करें, उनको तो आग में डाल दिया गया था। मूसा अलैहि सलाम को याद करें, उनके साथ फिरौन ने क्या किया था और किस तरह उनकी कौम ने उनको सताया था, और ईसा अलैहि सलाम के तो हद ही कर दी कि जब यहूद ने उनको सूली पे लटकाने के लिए प्रोग्राम बना लिया था। तो उनका सब्र देखें, उन उलुल अज़्म पैगंबरों का, कि कैसी कौमों के साथ उन्होंने सब्र किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जहाँ पे सूरह अनआम में, वलकद कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, है नबी आपसे पहले रसूलों को भी जुटलाया गया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया फिर, फसबरू अलामा कुज़्ज़िबू, उन्होंने सब्र किया इसके ऊपर जो उनको जुटलाया गया, व ऊज़ू, और वो अज़ियत दिए गए, हत्ताहुम नसरुना, हत्ता कि हमारी मदद आ गई, और वला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, आपके पास भी मदद आएगी, ऐ नबी आप सब्र कीजिए, जैसे उन्होंने पिछलों ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, और इनके बारे में जल्दी ना करें, जल्दी ना करें मतलब क्या, अगर अगर हम ये सोचे कि ये सूरत 10 नबवी में नाजिल हुई है, तो इसके बाद ही अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे में हिजरत का हुक्म दे दिया था, और अभी भी यानी 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आप जल्दी ना करें। हम तो 2 दिन ही तबलीग करके सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता इनका, अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है आप ना जल्दी करें। का अन्ना हम यौमा यरौना मा युआदूना, जिस दिन वो देखेंगे इसको जिसका वादा दिए जाते हैं, लम यलबसू इल्ला सात मिनन नहार, तो नहीं वो ठहरेंगे घड़ी दिन में से, यानी फिर उनको ऐसा लगेगा जिंदगी पूरी, कई की 100 साल थी, कि कई की 90 साल थी, कई की चलो इससे कम थी, लेकिन जिसकी 100 साल या 200 साल या 700 साल भी थी, वो भी कहेगा एक घड़ी दिन में से रहा, एक घड़ी दिन में से रहा, यानी दिन भी पूरा नहीं कहेगा कि पूरा मैं एक दिन ही दुनिया में रही हूं, ये पूरी जिंदगी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन की थी, नहीं ये भी नहीं कह रहा, कह रहा दिन का एक हिस्सा, अल्लाह अकबर, एक हिस्सा रहे, इतनी थोड़ी लगेगी ये जिंदगी, इतनी सी जिंदगी के लिए इंसान कितना कुछ अल्लाह की नाफरमानी का करता है कि अपने लिए जहन्नुम खरीद लेता है, और इतनी सी जिंदगी में भी क्या इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर सकता जिसको अपने मुंह से कहेगा मैं दिन का कुछ हिस्सा रहा। इतनी थोड़ी देर के लिए भी नहीं तुम अल्लाह की मान के रह सकते थे कि अभी अपने लिए जन्नत का सौदा कर लेते, अपने रब को राजी कर लेते, उसकी रहमतों के साए में आ जाते? इतनी देर के लिए भी नहीं तुम उसको राजी कर सकते थे? इतनी थोड़ी, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टाइम को ना, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि वो वाली डाइट ही कामयाब होती है जिसको लोग कहते हैं थोड़े से टाइम के लिए हो बस, यानी 3 दिन की या 5 दिन की, या मैं थोड़े ऐसे नहीं कि जो हमेशा के कहें आप ना कितने महीने आपको करना पड़ेगा, साल करना पड़ेगा, उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इंसान ना इतना इस चीज का हरीस होता है कि बस थोड़े दिन की अगर मुशक्कत उठानी हो ना तो वो उस पर राजी हो जाता है उसके। ये फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ये फैक्ट है जो उन्होंने लिखा हुआ कि इस तरह से लोग इस चीज की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड थे। तो उससे मैं सोच रही थी, देखो सुभान अल्लाह, कि इतनी थोड़ी जिंदगी, इतनी मुख्तसर जिंदगी, जिसको इंसान एडमिट करेगा कि मैं दिन का एक हिस्सा रहा, इसकी मुशक्कत उठाना भी मुश्किल। जबकि हम तो वो चीज जो थोड़ी देर की होती है उसके लिए ज्यादा आमादा हो जाते हैं, उसके जल्दी हम कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर करना है ये काम तो मैं कर लूंगी, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप कहती हैं 2 घंटे का तो फिर मैं कर लूंगी, अगर आप कहती हैं कि ठीक है 1 दिन का तो मैं कर लूंगी, 4 दिन का है वो भी करने को हम तैयार होते हैं, तो 2-3 दिन हमारे लिए इतने लंबे नहीं होते। ये जिंदगी तो दिन का एक हिस्सा, लेकिन आज नहीं ना हम समझते, आज हमें बड़ी लंबी लगती है ये, हम खुद अपने मुंह से कहेंगे कि ये दिन का एक हिस्सा थी, और इतनी थोड़ी देर के लिए भी नहीं अगर हम कर सके कोई ऐसा काम जिससे हम जन्नत में जा सके तो कितनी हसरत होगी, कितना फिर इंसान उस वक्त रोएगा, कितनी पशेमानी होगी कि हाय इतने थोड़े टाइम में भी मैं अल्लाह को राजी ना कर सके, इतने थोड़े टाइम के लिए ही करना था ना, क्या था मुझे? फिर इसी ने तो अपने हाथों को काटेगा, फिर इसी ने कहेगा ना क्यों नहीं मैंने इनका रसूल का रास्ता इख्तियार किया, क्यों नहीं मैंने बात मान ली, क्योंकि इतनी थोड़ी देर के लिए ही तो थी, इतनी शॉर्ट तो थी लाइफ, पलक झपकने में गुजर गई, एक साथ की थी, एक घड़ी थी बस, ये मैंने क्या कर दिया, इस वजह से इतना पछतावा होगा। बला बात ही खत्म कर दी गई, बस पहुंचान, पैगाम पहुंचाना है बस, ये है आपको पैगाम पहुंचा दिया गया ना, तो है नबी बस आपका काम यही है, बस पहुंचा दे और कुछ नहीं, पहुंचा दे बस। फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो नहीं हलाक की जाएगी मगर फासिक कौम। पहुंच, पैगाम पहुंच भी गया उसके बाद भी अगर किसी ने नहीं माना तो ऐसे फासिक ही होंगे जो फिर हलाक होंगे, जो जरा भी अकल रखता हो, समझ रखता हो, वो तो फिर कभी भी आग का सौदा नहीं करेगा। इतात गुजार तो हलाक नहीं होंगे, फासिक ही हलाक होंगे, और फासिक वो ही है, फासिक वो होता है जो अल्लाह की जो हदें हैं कायम की भी उनसे निकल जाए, जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दे, जो इतात से बाहर निकल जाए, वो फासिक होता है। अब जब बला हो गया तो किसी को फासिक नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई फासिक रहा तो फिर वो हलाकत ही है उसके लिए, और क्या। तो हम देखते हैं कि देखिए सुभान अल्लाह, सूरत का शुरू भी कुरान के जिक्र से है कि ये कुरान नाजिल हुआ उस अजीज और हकीम की तरफ से, एंड भी है बलाग पहुंचा देना, हमारा काम भी क्या है बलाग पहुंचा दे बस, यही हमारा काम है और यही कुरान का पैगाम है, आगे तक पहुंचा दे, और इसी कुरान के जरिए ही इंसान को हिदायत हासिल होती है, इसी कुरान के जरिए इंसान राह पाता है, और जो दाई है उसको सब्र से काम लेना होगा। पैगंबरों तक को यही मैसेज दिया गया, ये कोई फूलों की सेज नहीं है कि लोग हार पहनाएंगे, लोग अनॉयड भी होंगे, कभी कोई बात भी सुनाएगा, कभी कोई तेवरी भी चढ़ाएगा, कभी कोई बुरी बात भी कह देगा, कभी कोई देख के आपको भाग भी जाएगा, लेकिन सब्र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये तसल्लियां दे रहा है जब आप ताइफ से वापस आ रहे हैं, जब आपका दिल मजरूह है, जब मक्के वाले भी आगे खून के प्यासे हैं और वहां पे भी अब दाखिल होने की समझ नहीं आ रही कि कैसे दाखिल हुआ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पनाह लेके गए थे फिर फिर ऐसे वक्त में जो बहुत डेस्परेशन का वक्त है, उस वक्त भी कहा जा रहा है सब्र कीजिए, उस वक्त भी कहा जा रहा है जल्दी ना कीजिए, उस वक्त भी कहा जा रहा है चलते रहें इसी रास्ते पे। सब्र यही होता है कि इंसान अपना रास्ता ना छोड़ दे, छोटी छोटी बातों पे डिसहार्ट होके, हिम्मत हार के ना बैठ जाए। किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ ताना दे दिया, उसके ऊपर फौरन सारा काम छोड़ छाड़ के, अब हमसे नहीं होता, हमें तो फलाने ये कह दिया, ये बेसब्री है। तो सब्र से काम लिया जाए, और जिन्नों से ही हम कोई सीख लें बात, अगर हमें खुद नहीं समझ आती, जिन्नों से ही सीख लें, वो कैसे अल्लाह का पैगाम लेकर आगे गए, उन्होंने कौन सी बातें सुन के और फिर उनके दिल में उतर गई। एक दफा का कुरान सुना हुआ दिल में उतर गया, हम तो आप 26वें पारे पे पहुंच गए, अभी भी हम पूछते हैं कि हमें बला करना है, पहुंचाना है कि नहीं। और ये ना समझे कि हमेशा की ये जिंदगी है, आज तो ऐसे ही लगता है ना, पता नहीं यहीं पे हैं और यहीं रहेंगे, नहीं जल्दी ये खत्म हो जानी है, ये तो एक घड़ी की है। और आज की जिंदगी के मुकाबले में जब वो लाखों करोड़ों साल की जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी आएगी, तो उसका सामना कैसे करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए सोचें, शऊर की जिंदगी गुजारे, बेशऊरी की नहीं कि बस जिंदगी गुजरती जा रही, टाइम पास होता जा रहा, पता ही नहीं किधर जा रहे हैं और किधर को एंड अप होना है, शऊर की जिंदगी गुजारे। और ये हकीकतें अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं, और ये हक है, ये सब हक है। अल्लाह ताला हमें इससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فيه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.